वो राजा मेरा भाई मुझे अभी बता रहा था कि वहाँ पर ये रुमाल रखे हुए हैं उन लोगों के लिए हैं जो कैंसर से मर रहे हैं, तो हम उनके लिए बस थोड़ी देर में प्रार्थना करेंगे। 2 इंचियाँ तो ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। तो ठीक है श्रीमान, और मैं उन्हें यहाँ प्रार्थना करने के लिए रख देता हूँ। और तब किसी ने बस कुछ लिखकर भेजा है, उसने यहाँ आकर और उस पर कुछ लिखकर दिया है जो कल की सभाओं के बारे में है। आप जो लोग हमारे यहाँ आना जाना करते हैं, हमें निश्चय ही खुशी होगी कि आप दोपहर 2 बजे यहाँ आ जाएं। कल दोपहर को वे टेप की सभाओं को करने जा रहे हैं, और यदि आप कुछ व्यस्त नहीं हैं, तो एक संदेश को चलाया जाएगा जो टेप आपने कभी नहीं सुना है, उसे चलाया जाएगा और प्रार्थना सभा होगी। और हम कल दोपहर 2 बजे एक अच्छे समय की अपेक्षा करते हैं। यह कल मेरे लिए एक बहुत ही व्यस्त समय होगा, क्योंकि कल देखो मुझे रविवार की सुबह सभा को लेना है और रविवार की रात को भी सभा लेना है और कल रात को भी, और उन कलीसियाओं के सारे इतिहास को लेना है। और अब रविवार की सुबह प्रभु की इच्छा हुई तो हम एक महान समय की आशा कर रहे हैं, क्योंकि रविवार की सुबह हमारी छुट्टी का दिन होता है, एक प्रकार से छुट्टी होती है। तो शनिवार की रात को जो लौदिकिया कलीसिया का काल लेना है, लेकिन रविवार की सुबह को मैं इसे लेना चाहता हूँ, सोई हुई कुंवारी और वो पुनरुत्थान और वो 1,44,000 और वे सारी छोड़ी हुई बातों को ले लूंगा जो रविवार की सुबह के लिए संदेश को एक साथ जोड़ देगा। तो सभाएं 9 बजे आरंभ होगी, क्या ये सही है पास्टर? रविवार की सुबह 9 बजे जो हम उन सारी चीजों को लेना चाहते हैं, जैसे कि उन सोई हुई कुंवारियों का क्या होता है और उन बुद्धिमान कुंवारी का क्या होता है, वे कब वापस लौटते हैं, या 1,44,000 कहाँ दिखाई देंगे, और ऐसी ही बहुत सी बातें रविवार सुबह के लिए है जिसे संदेश के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो ठीक संदेश के साथ जुड़ जाएगा। और फिर रविवार की रात को हम अंतिम महान दूत को ले लेंगे और लौदिकिया के संदेश को ले लेंगे रविवार की रात, प्रभु ने चाहा तो। और अब फिर कल दोपहर को यहाँ पर सभा होगी जो एक टेप की सभा है। भाई जीन ने मुझे अभी बताया कि वे हम दोपहर 2 बजे आरंभ करेंगे, और आप लोग जो संदेशों को सुनना चाहते हैं, वेदी पर आकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आप जो पवित्र आत्मा के लिए देख रहे हैं या कुछ तो और अद्भुत समय के लिए देख रहे हैं, कलीसिया अच्छी और गर्म है, खुली है और किसी भी समय पर किसी के लिए भी खुली है जो अंदर आकर और प्रार्थना करना चाहते हैं और प्रभु को पाना चाहते हैं। कलीसिया खुली हुई है और प्रतीक्षा कर रही है, और हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। इसे इसी तरह से रखें, कल दोपहर के लिए आपसे यही अपेक्षा होगी, या किसी भी समय आप प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में आना चाहते हैं, क्योंकि यह हमेशा ही तैयार है। और यदि वे इस तरह से दरवाजे को बंद करते हैं या ऐसा ही कुछ तो और, तो वहाँ सड़क के पार मेरा भाई रहता है जो यहाँ का कार्यवाहक है। मुझे लगता है कि उनका पता 411 है, मैं सोचता हूँ कि या 811, क्या ऐसा है? 811 बस लगभग कलीसिया से यहाँ कोने के मोड़ पर ही है, 811। वो क्यों? उनकी पत्नी के पास चाबी रखी होगी। यदि वे पूरी तरह दरवाजे को बंद करते हैं और उस पर ताले को लगाते हैं, लेकिन वे शायद सुबह को इसे खुला छोड़ देते हैं, इसे खोल देते हैं। यह सभा के बाद रात में बंद कर दिया जाता है ताकि बच्चे लोग इसमें यहाँ वहाँ न दौड़े, आप जानते होंगे, और वे खिड़कियों को तोड़ देंगे और इत्यादि। आप तो जानते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, विशेषकर इस दिन में, तो हम इस वजह से बंद कर देते हैं। हम यहाँ तक इस बात को पसंद भी नहीं करते कि किसी भी समय कलीसिया का दरवाजा बंद रहे। हो सकता है कि जब एक दूसरा स्थान मिल जाएगा तो हम इसे वैसे ही खुला रखेंगे, तब यह भिन्न बात होगी। और हम कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर वहाँ उपस्थित हो सकता है, जिससे कि लोग इसमें आकर और प्रार्थना कर सकते हैं और चंगाई को पा सकते हैं, पवित्र आत्मा को मांग सकते हैं। आप जिन्हें जीवन में पवित्र आत्मा नहीं मिला है, नीचे आकर यहीं पर बने रहें, बस पूरी रात बने रहें यदि आप चाहें तो, बस तब तक रहें जब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर लेते। कौन था जो यहाँ कुछ समय पहले गा रहा था? परमेश्वर पूरी तरह से मुझ पर है और परमेश्वर हर स्थान पर है। मुझे ऐसा लगा कि रैप्चर आ गया है। मैं वहाँ यहाँ वहाँ देख रहा था और देख रहा था कि क्या हर कोई आसपास था। ये वास्तव में अद्भुत था, मैं इसकी सराहना करता हूँ। हम लगभग किसी भी समय उस पर थोड़ा बने रह सकते हैं। जी हाँ श्रीमान, यही मैं बस उसी वक्त आया जिससे कि मुझे ये सुनने के लिए समय मिला, और मैं इन सभाओं में सारे अच्छे गीतों को सुनने से चूक गया, क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है, ओ मैं बस इतना व्यस्त था। आप जानते हैं कि यह किस तरह से होता है, लोग हवाई जहाज से, ट्रेन से आते हैं, आप ये कभी भी नहीं जानते होंगे। आप देखें क्योंकि ये तभी उनके फोन आते रहते हैं, आपको उनके पास जाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है और उनके लिए प्रार्थना करनी होती है और हर जगह से ऐसा बस लगातार होते आ रहा है और फिर अध्ययन करने की भी कोशिश करता हूँ, इसी से बहुत अधिक इसकी समस्या होती है। लेकिन हमें हमेशा लोगों से मिलने पर प्रसन्नता होती है और उनके लिए वो करना जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये यही हमारा, हम इस दिन में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक सार्वजनिक दास है उसके लोगों के लिए, और हम जितना करते हैं उससे अधिक करना पसंद करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक सेवक आज सुबह पहुंचा, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, बस उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो भला व्यक्ति है और क्योंकि वह उसने तब बहुत अधिक काम को किया था, वह उठने लगा और उसकी छोटी लड़की कमरे में खड़ी हुई थी, वह बस यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी, उसने छोटा लाल रंग का पैजामा पहना था। उसने कहा आखिरी बात जो उसे याद है वो थी छोटी लाल बिंदु गोल 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 और गोल गोल घूम रही थी, इस तरह से वे बाहर निकले देखो, और इसलिए वे उसे तुरंत लेकर गए। तो यह बस बहुत ही अधिक काम करने से हुआ। आप देखते हैं, आपको याद है कि आप शारीरिक हैं और हम चाहते हैं, हमें लगता है कि सारा बोझ हम पर ही पड़ा है, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर के पास उनमें से कुछ लोगों का ध्यान देने के लिए हर जगह दास हैं, और इसलिए हम बस सबसे अच्छा करते हैं जितना हम कर सकते हैं। लेकिन एक अनुग्रहकारी सेवक अपने प्रभु के लिए इस अंतिम दिनों में वह सब करने की कोशिश करता है जो वो कर सकता है। मुझे पक्का है कि और प्रभु ने उसे वहीं पर छुटकारा दिया, वो अब वो ठीक है और प्रभु ने उसे ठीक वहाँ वापस वहाँ पर सामान्य रूप से लाया, बिल्कुल ठीक, आनंदित होते हुए अपने रास्ते पर निकल गया। और ओह, आज एक बड़ी बात घटित हुई, मैं बस उन चीजों पर आरंभ नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानते हैं मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने कहा अब वहाँ पर कोई तो आएगा और वो एक पुरुष होगा जो छोटे कद का गठीला काले बाल और काली आंख है, और वह उस चिन्ह को समझ लेगा और आरंभ, लेकिन तुम उसे बुलाओगी? देखो, मैंने कहा क्योंकि प्रभु के पास उसके लिए एक संदेश है। और मैंने खुली बाइबल को ऊपर उठाया और मैंने कहा मैं इन बातों को यहाँ रखने जा रहा हूँ ताकि आप देखें कि वास्तव में यही है वो जो प्रभु उससे करवाना चाहता है। 8 वर्ष पहले पोलैंड का एक पोलिश मनुष्य पोलैंड में खड़ा हो गया, एक सभा में वह मंच पर आया और उसने कहा, या पवित्र आत्मा ने उसकी ओर देखा, उसे बताया तुम बस उलझन में हो, यह वही है। उसने सोचा कि इसे मैंने कहा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा था, यह उसके साथ हर समय बना रहा और अतः उसे कल रात को कैंसास शहर से इमारत में लेकर आया और फिर उस पानी के बपतिस्मा के बारे में सुनकर वो वास्तव में उलझन में पड़ गया था। वह अपने होटल गया और पवित्र आत्मा ने कहा अभी उठो और वहाँ पर जाओ, कोई तो उसके साथ आना चाहता था लेकिन उसने इसे मना कर दिया क्योंकि दर्शन में वह अपने आप से आता है, समझे? और इसलिए और वह सज्जन पुरुष की तरह था, चिन्ह को समझने के लिए उसने बढ़ना आरंभ किया, वो वापस पीछे की ओर मुड़ा और पत्नी ने उसे बुलाया और मैं दरवाजे के पास गया, मैंने कहा यही यही है वो, उसे आने दो। उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद उसने समझ लिया, उसने कहा अब मैं इसे देखता हूँ। मैंने कहा मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप अब इसे जान जाएं, आप देखना। मैंने कहा प्रभु ने मुझे बताया कि आप आ रहे हैं, आप इस बात को उससे पूछ सकते हैं। मैंने कहा अब वहाँ पर वो वचन है, आगे बढ़ने से पहले इसे ठीक यहीं पर पढ़े तो ठीक है। वह अब यहाँ पर है, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने वाला है, तो वह अब हो सकता है यहाँ पर बैठा हुआ हो जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या आप यहाँ है भाई? एक भाई, एक पॉलिश भाई, हाँ पीछे कोने में यहाँ है वो, जी हाँ, खड़े हो जाएं, अपना हाथ ऊपर करें जिससे कि वे आपको वहाँ देख सकते हैं, तो ठीक है। पवित्र आत्मा को देखने के लिए ऐसा बस हर समय होता आया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दर्शन केवल मंच पर आते हैं, ओह इससे ये आरंभ नहीं होता है, इसके बारे में क्या है भाई लियो? बस हर कहीं पर देखें, खैर ये यहाँ इसके लिए छोटा सा ही स्थान है, ये तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है, वहाँ बाहर जहाँ यह दिन रात होता रहता है, आप देखें, जी हाँ, मेरी पत्नी से पूछें और वह या उनसे और जो मेरे पड़ोसी हैं जो वहाँ पीछे रहते हैं बाईवुड और उन सबसे जो आसपास रहते हैं, ओह प्रभु ये तो यहाँ छोटी छोटी चीजें होती हैं, यह बड़ी चीजें हैं जो वहाँ पर होती हैं। अब वो आधा अब तक नहीं बताया गया है, ओह मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ यह जानकर कि हमारा प्रभु जल्द ही आने वाला है और हम तब उसके साथ हमेशा के लिए रहने वाले हैं, ना ही हमेशा के लिए लेकिन अनंतता अनंतता के लिए। अब प्रभु ने चाहा तो मेरा सोचना है कि 18 तारीख है रविवार को, एक सप्ताह बाद रविवार, एक सप्ताह के बाद 18 तारीख एक भयानक लड़ाई हुई थी। शैतान मुझे इस फ्लू को देने की कोशिश कर रहा था जिसे वो यहाँ लेकर आया। मैं तब उसे वापस सौंप रहा था और या उसे मुझे सौंप देता था और मैं उसे वापस सौंप देता तो, और सो मैंने सचमुच एक छोटी सी लड़ाई लड़ी है, तो हो सकता है हमारी ऐसी ही अगले हफ्ते लड़ाई होगी। और फिर प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार तक 18 तारीख को, और हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए छोटी सी सभा को लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे कुछ बातें आगे और पीछे और आगे और पीछे हो रही हैं, और जो वास्तव में आपातकालीन स्थिति है, हम जितना जल्दी कर सकते हैं इस बात को ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं, और समय का, हर रोज रात के समय का और हर चीज का जो लोग आएंगे और जाएंगे। तो 18 तारीख को हम एक नियमित रूप से चंगाई की सभा करने जा रहे हैं, और यदि आप अपने कुछ प्रियजन के लिए जो चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें तो आप उन्हें लेकर आ सकते हैं या उन्हें उस समय पर लेकर आएं। अब जेफरसन विले के बहुत से लोग मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि वे यहाँ पहुँचने के लिए समय पर आ जाते हैं लगभग 5 बजे। उन्होंने कहा कि उनकी कारों को खड़ा करने के लिए और जगह नहीं होती है, या 6 बजे। तो वे, मैंने कहा ठीक है, आप, यह हमारे अतिथि भाई लोग हैं जो हर कहीं से आते हैं, बहुत से तो सेवक लोग हैं। मैंने कहा वे इस शिक्षा पर ही बने हुए हैं और हम केवल मुख्य बातों को देने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर कुछ समय के बाद, क्योंकि हमारे पास यह पुस्तक के रूप में होगा जिससे कि आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे थोड़ा कुछ और इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि रात में आपने ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ रातों से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी आवाज को संभाल रहा हूँ, आप देखें, क्योंकि वो बड़ा अंतिम चरण बिंदु यही है वो जिसे मैं देखना चाहता हूँ, जहाँ पर इस युग में मसीह के प्रकाशन को बताया जाना है, देखें कि ये प्रकाशन क्या है। और अब इससे पहले कि हम वचनों को पढ़ना आरंभ करें, और मैं जानता हूँ कि कल बड़ा व्यवसाय का दिन है जब हम सभी को अपने लिए शनिवार की रात को घर के लिए राशन का सामान लाने जाना पड़ता है, और हम इसे शनिवार दोपहर या शनिवार की सुबह को कभी भी इसे ले लेंगे, जिससे कि कलीसिया में आने के लिए शनिवार की रात को हमें समय मिल सके। इसलिए हम आज रात जल्दी बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, तो जिससे कि आप बहुत अधिक थक न जाएं, आपको ये कल मिल सके, और उसके बाद दोपहर की सभा के लिए वापस आ जाएं, जो सभा भाइयों के साथ होगी टेप की सभा के लिए, और ये कल रात को भी होगी। अब क्या हम प्रार्थना के लिए बस कुछ क्षण के लिए खड़े हो सकते हैं? यदि आप चाहें तो मैं सोचता हूं इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, यदि किसी के पास यह प्रार्थना के लिए विशेष विनती है तो क्या आप इसे केवल हाथ को ऊपर उठाकर याद करवाएंगे? परमेश्वर देखता है। अब आप देखें, चाहे हम एक जरूरतमंद संसार में हो या नहीं हो भाइयों, मैं सोचता हूं कि 99 या 98% श्रोतागण ने अपने हाथों को उठाया है। फिर अब याद रखें, परमेश्वर के इसे जाने बिना यहाँ तक आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, समझे? वह आपके इरादों को जानता था, वह जानता था कि आप क्या मांग रहे थे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम आज रात आपकी पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, आपके सियासन की ओर, आपकी प्रतिज्ञा के जरिए से जो आपने कहा था कि आप सुनेंगे, और यदि हम विश्वास करें तो आप हमें वही देंगे जो हमने मांगा था। और हम अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करते हैं, हम महसूस करते हैं प्रभु कि हम आपके किसी भी आशीषों के योग्य नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, हम पूरी तरह से अयोग्य हैं, और हम उस तरह से नहीं आए हैं जैसे कि हम योग्य हों, और या हमने कुछ तो शानदार किया है। हे पिता, जब हम कलवरी को देखते हैं जो हमसे हमारी महानता को निकाल देता है, और हम तब और कुछ नहीं जानते सिवाय मसीह और उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के, फिर जब हम देखते हैं कि वह वचनों के अनुसार तीसरे दिन जी उठा हमारे धर्मीकरण के लिए, पवित्र आत्मा के रूप में 40 दिन बाद वापस लौटा हमारे साथ रहने के लिए, जब तक कि वो अंतिम समय में आकाश में दिखाई नहीं देता, और हम देखते हैं कि अंत समय अब तेजी से वास्तविक होता जा रहा है, और हम सबसे आनंदित लोग हैं प्रभु, इसलिए कि आपने हमें इस महान सौभाग्य को दिया है। मैं बहुत धन्यवादित हूँ पिता कि ये सुनने वाले श्रोतागण झुके हुए हृदय के साथ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, और फिर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज रात मेरे होठों को पवित्र करेंगे, और ऐसा हर रात और हर बार हो जब मैं आपके लोगों से बात करने के लिए आपके पुलपिट पर आऊं, क्योंकि प्रभु मैं कभी कुछ गलत ना बोलने पाऊं। आपके पास अब भी मुंह बंद करने की सामर्थ्य है, जैसे आपने दानियल के साथ शेरों की बांध में किया था। और यदि मैं कभी भी कुछ भी ऐसा कहता हूं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, तो मेरे मुंह को बंद करें परमेश्वर, कि मैं इसे ना बोलूं। मेरे विचारों को एक तरफ करें, मुझे सही रास्ते पर रखें प्रभु, जहां मैं सत्य के अलावा और कुछ न बोलूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उस महान दिन में ये लोग उस ओर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उस सेवकाई के अनुसार प्रतीक्षा कर रहे होंगे जिसे मैंने उन्हें प्रचार किया है। यदि आप अपने किसी भी तारे और आपके दूत आपके सेवकों को लेने के लिए आते हैं, पहले उनकी ताड़ना किया जाना है इन संदेशों के अनुसार जिसे हम यहाँ प्रचार करते आ रहे हैं। आप उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे जो आपके सेवकगण हैं। अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा को बोलने देंगे और मनुष्य को नहीं, हमारे हृदय का खतना करें कि हम उसे सुन सकें। मैं सुन रहा हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बीमारों और पीड़ितों को चंगा करेंगे, सभी लोगों को जो हर कहीं आवश्यकता में है उन पर अनुग्रह करें और आपकी दया उनके साथ हो। हर एक विनती को प्रदान करें जिसे आज रात हाथ को उठाकर ज्ञात करवाया गया था, देश भर में जबकि बहुत से अन्य लोग पीड़ित हैं, ये रुमाल भी जो उन्हें दर्शाते हैं, और इन विनतियों को यहाँ मेरे हाथ के नीचे रखे हुए हैं। पवित्र आत्मा इसका उत्तर दे पिता, और बीमारों को चंगा करे। आपके लिखे हुए वचन के जरिए से पवित्र आत्मा के द्वारा अब हमसे बात करें, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। अब आज रात ये कलीसिया में थोड़ी गर्मी है, बड़ा लौतकिया कलीसिया काल आगे आ रहा है, और आज रात हम उस महान कलीसिया के समीप जा रहे हैं जो कि पांचवा कलीसिया काल होगा। हमने पहला कलीसिया काल लिया जो इफिसियस है। हो सकता है कि मैं आरंभ में इसे फिर से पढूं, उन सभी को लिखा गया था और इसलिए मैं उन्हें आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं, जिससे कि आप अपने लिखे हुए पन्नों से मिला सकते हैं। पहला कलीसिया काल इफिसियो कलीसिया काल था, जो कि ईसा पश्चात 55 से 170 तक था। पौलुस वो तारा था और यह पहला कलीसिया काल था। काम जो प्रेम के बिना थे, ये परमेश्वर का अभियोग था, इनाम था जीवन का वृक्ष। दूसरा कलीसिया का काल 170 से 312 था। उस दिन का दूत एरेनियस था और अभियोग एक महासंकट और एक सताई हुई कलीसिया, इनाम था जीवन का ताज। तीसरा कलीसिया काल पिरगमुन था, संत मार्टिन उस कलीसिया का दूत था। कलीसिया का काल 312 से 606 तक था। अभियोग था झूठी शिक्षा, शैतान का झूठ, पापल राज्य की नींव और कलीसिया का विवाह और राज्य का एक साथ था। इनाम था छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर। और चौथा कलीसिया काल थुआतीरा था, कोलंबा जो उस कलीसिया युग का दूत था, 606 से 1520। और इस कलीसिया के काल में पापल का बहकाना था, अंधकार काल जिसे पिछली रात को लिया था, आप जानते हैं अंधकार का काल। और इनाम था राष्ट्रों पर राज्य करने की सामर्थ्य और भोर का तारा दूत के लिए। अब आज रात हम पांचवें कलीसिया काल को आरंभ कर रहे हैं, जो कि सर्दिस कलीसिया काल है, SARDIS सर्दिस। और इस कलीसिया काल का संदेशवाहक मार्टिन लूथर था, जो बाइबल के विद्वान या इस शिक्षा के लिए जाना माना जाता है, या मेरा मतलब आज आम जनता के लिए परिचित है। और ये कलीसिया काल 1520 में आरंभ हुआ और 1750 से 1750 में समाप्त हुआ, और जिस काल को हम सुधारकों का काल कहते हैं। और अभियोग था अपने खुद के नाम का उपयोग करना, और जो थोड़े शेष बचे हुए थे उनके लिए इनाम था उसके सामने सफेद वस्त्र में चलना, और मेमने के जीवन की किताब में उनके नाम, जैसा कि अभी हम हाथों में लेते हैं। प्रभु हमें आशीष दे। अब हम इस कलीसिया काल के तीसरे अध्याय के पहले पद पर आरंभ करते हैं, सर्दिस को संदेश, जो सुधारकों का समय काल था। कुछ ही संख्या में विश्वास करने वाले बचे हुए लोग, जो बस लगभग बाहर ही थे। अब कुछ नए आए हुए लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ इसे कहूँ कि इसलिए कि आप इन बातों से पीछे न रह जाएं, बल्कि ये अधूरा है और कुछ समय में हम आएंगे जहां हम अपने संदेशों को रख सकते हैं, इसे दोपहर में आकर वहां ऊपर चित्रित करके और इसे ऊपर लगाएंगे। हो सकता है इसे रविवार को करें। अब ये प्रत्येक कलीसिया काल को दर्शाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह फिलाडेल्फिया के साथ आरंभ, और यहाँ यह ऊपर उस पेंटिकॉस्टल की सामर्थ को दर्शाता है या एक कलीसिया को जो पेंटिकॉस्ट पर थी। यह शुरुआत में काफी बड़ी कलीसिया थी, लेकिन उन्होंने एक सांप्रदायिक आत्मा को उनके बीच आने दिया जो कि कलीसिया को संप्रदाय बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे निकलियों के कार्य कहा जाता था। क्या आप मुझे वहाँ पीछे सुन सकते हैं? हाँ तो ठीक है, निकलियों के कार्य। अब यह अब तक एक शिक्षा नहीं थी, और फिर हमने इस शब्द को लिया और इसे अलग अलग किया, जो था कार्य, जो था निकलियों। यह हमारे लिए एक अनजान नाम है, निकलियों। इसलिए मैंने इसे यूनानी से लिया और इस शब्द को अलग अलग किया, और निकू का अर्थ होता है पराजित करना या विजय को पाना या कुछ तो तख्ता पलट करना। निकलियों, लियों कलीसिया है, साधारण जनता। निकलियों एक ऐसे कार्य जो साधारण लोगों का तख्ता पलट करने का प्रयास कर रहा था, और सारी आशीषों को डाल दिया, और उन्होंने ऐसा किया कि केवल एक ही होगा जो बाइबल को पढ़ेगा, केवल एक ही होगा जो अनुवाद को करेगा, वो होगा बिशप या कोई तो कलीसिया का बड़ा प्रधान व्यक्ति ऐसा करेगा। तब हम पाते हैं दूसरे कलीसिया काल में यह बाहर निकलने के मार्ग के लिए दबाव को आरम्भ करता है। यह अब भी पेंटिकॉस्ट है और ये संप्रदाय डिनोमिनेशन है, डी। अब तीसरे कलीसिया के काल में पिरगमुन पेंटिकॉस्ट को लगभग निचोड़ दिया गया था, लेकिन संप्रदाय की शिक्षा या यहाँ कामों से होते हुए यहाँ शिक्षा बन जाती है। तब वे वास्तव में ठीक यहीं पर विवाह कर लेते हैं। उन्होंने विवाह कर लिया, यहाँ इस समूह ने पेंटिकॉस्टल समूह को वश में कर लिया था। अब जिस तरह से मैं कह रहा हूँ भाइयों, ये सच्चा कथन है, यह इतिहास के पवित्र लेख के अनुसार है। निसियन परिषद की वे किताबें, फॉस की शहीदों की किताब और सारे महान प्राचीन लेखन, मेरे पास वहाँ कुछ सबसे पुराने हस्तलिखित लेख हैं, और हरेक, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं पेंटिकॉस्ट हूँ। इसका मतलब यह नहीं है, जब मैं कहता हूँ पेंटिकॉस्ट, तो इसका मतलब इस दिन के संगठन से नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। यह तो उतना ही दोषी है जैसा कि वे बाकी के सब हैं, लेकिन मेरा अर्थ वास्तविक पेंटिकॉस्ट से है, जो मूल सिद्धांत के साथ परमेश्वर की वास्तविक आत्मा, मूल आशीषों के साथ, मूल नामों के साथ, हर एक चीज बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे ये आरंभ में शुरू हुआ, जैसे ये बाइबल में से होते हुए चला गया। अब जब हम इस काल में आते हैं, तो आप देखते हैं कि पेंटिकॉस्ट कितना दूर निकल आया है। क्या आप इसे पीछे ठीक तरह से देख सकते हैं? क्या आप इसे वापस वही कर सकते हैं? तो ठीक है। अब यहाँ हम कल पिछली रात को इस पर आए, वो महान काल जिसमें हम यहाँ हैं, कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन, CONS, मैं इसे लगा दूंगा। वह एक पागान होने की वजह से यहाँ इन मसीहों से कहा, उनसे जिनके पास निकलियों की शिक्षा थी, यदि वे प्रार्थना करेंगे कि कोई तो एक लड़ाई को वो जीत लेगा, तो वह एक मसीह बन जाएगा। उस समय के दौरान जब वो उस युद्ध में था, उसने एक सपना देखा कि उसे चाहिए एक सफेद क्रूस के जरिए से, जो उसके सामने रखा गया था। उसने कहा, इसके जरिए से तुम जीत जाओगे, और ये सही बात है। उसके बाद उसने अपनी सेना को नींद से उठाया और उनकी ढाल पर सफेद क्रूस को चित्रित किया, और यही उसका जन्म स्थान था या कैथोलिक विधि की शुरुआत थी, जिसे आज कोलम्बस के शूरवीर करके बुलाया जाता है। आप कॉन्स्टेंटाइन, वहाँ आप इतिहास से ऐसी एक चीज को नहीं बटोर सकते हैं कि वो परिवर्तित हुआ था। वह एक धोखेबाज राजनीतिक के अलावा और कुछ नहीं था। उसके दिमाग में ये विचार था कि अपने राज्य को एकजुट करे और इसे मजबूत बनाए, तो वह अपने आप में पागान होने की वजह से मूर्तियों की आराधना करता था। तब उसने देखा कि निकलियों की शिक्षा ने हर जगह पर लगभग निचोड़ लिया था, इसलिए उसने उसी रणनीति का इस्तेमाल किया जो हमने कल रात को देखा था, और यीशु ने इसे पूरा होने से 300 से 400 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वो बालाम की शिक्षा को सिखाएगा, किस तरह से बालाम ने इज़राइल के बच्चों को भरमाया, उसने उन्हें व्यभिचार करने के लिए प्रेरित किया और इस बात की पेशकश की मूर्तियों को चढ़ाने के लिए चीजों को लिया, उनको खाया। अब हम जानते हैं उन मूर्तियों पर चढ़ाई हुई चीजों को खाया। वास्तव में ये क्या था? उसकी आराधना करना था। वे अंदर जाकर वे मूर्तियों के सामने झुक रहे थे, मूर्तियों को मसीही कलीसिया में वापस रख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कि बालाम ने वहाँ पहले किया था, इसराइल से व्यभिचार करवाया, मूर्ति के उस बड़े पर्व में लेकर गया। तो ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी रणनीति के साथ ऐसा ही किया और उसने एक कलीसिया बनाई। उसने निसियन परिषद के लिए बहुत कुछ किया और फिर वे उसने एक बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जो उसके पास थी और उसने इन इमारतों को कलीसियाओं में बदल दिया। और फिर उसने एक बड़ी संगमरमर की वेदी बनाई जिसे सोने और रत्नों से सजाया गया। वहाँ ऊपर उसने एक सिंहासन की तरह रखा और उसने एक मनुष्य को एक प्रधान की तरह बनाया, उसे तब बिशप कहा गया, और उन्होंने उसे इस सिंहासन पर बैठा दिया। बोनीफेस तृतीय को सिंहासन दिया गया। न ही केवल वो ऐसे ही कपड़े पहन करके यहाँ वहाँ चलता था जैसे वो अनाड़ी पहनते हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक शानदार अच्छे वस्त्र बनवाए और उसे एक देवता की तरह कपड़े पहनाकर और उसे वहाँ पर बैठा दिया और उसे पादरी कहकर बुलाया। पादरी या विक्रिवस फिलिडी, इसका अर्थ है परमेश्वर के पुत्र की बजाय। अब यहाँ उसके पास जिसके पास बुद्धि है, अंकित करके इसे लिख दिया विकारियस फिलिडी। और फिर जब आप यहाँ नीचे एक रेखा को खींचते हैं और संख्याओं को जोड़ते हैं और आपको ठीक वैसा ही मिलता है जैसा परमेश्वर ने कहा था, जो पशु की छाप थी 666। देखिए विकारियस फिल्ली। अब मैं रोम में गया हूँ और वेंटिंगन में गया हूँ और तिगुना ताज, नरक, स्वर्ग और पवित्रता का न्याय अधिकार, समझे, मुकुट को देखा, वस्त्र को देखा, ठीक सब वहीं पर देखा। असल में गुरुवार दोपहर को 3 बजे मैं आखिरी पोप से मिलने वाला था जो वहाँ पर था, बैरन वॉन ब्लूमबर्ग, और उसके बाद उसने कहा, अब जब आप वहाँ पर जाएं, भाई ब्रैनम, पहली बात जो आपको करना है अपने दाहिने घुटने पर झुकना है और पोप उसकी अंगूठी को चुम्बन लेना है। मैंने कहा, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, बस ये तो भूल जाए। मैंने कहा, मैं देता हूँ, मेरे पास उस मनुष्य के विरोध में कुछ भी नहीं है वह, लेकिन मैंने कहा एक चीज है, मैं एक मनुष्य को उसकी उपाधि दूंगा, यदि वह रेवरेंट आदरणीय है तो कोई बात नहीं, बिशप, प्राचीन, डॉक्टर, जो भी है, मैं खुशी से एक मनुष्य को सलाम करता हूँ। लेकिन क्या एक मनुष्य की आराधना करना है? मैं एक ही मनुष्य को अपना सत्कार अर्पित करता हूँ, यीशु मसीह, यही केवल वो मनुष्य है जिसके सामने मैं झुकता हूँ। मैंने कहा, बस इसे भूल जाएं, बस इसे रद्द कर दें, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और इसलिए मैं घर आने के बाद मुझे पता चला कि एक और बड़े अमेरिकी व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया था, टेडी रूजवेल्ट, उसने ऐसा करने से इंकार किया था। याद होगा कि ऐसा इतिहास में है, उसने पोप से मिलने से मना कर दिया क्योंकि उसे उसकी अंगूठी को चुम्बन लेना था या उन्हें पैर के अंगूठे पर भी आना पड़ता था, आप जानते होंगे। तो ओ नहीं नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो फिर भी अब जैसे बालाम, तब हमने कल रात को देखा यहाँ पर, अब पहले यहाँ, इससे पहले कि हम यहाँ छोड़ें, उन्होंने कलीसिया को सम्मिलित करके और विवाह किया, कुछ पागान के विचारों को लिया, पागान की मूर्तियों को जो कलीसिया में थी, जुपिटर के देवता, सूर्य का देवता, मार्स का देवता, वीनस का देवता और सभी देवताओं की मूर्तियाँ, और उसने उन सभी पागान की कलीसिया से बाहर कर दिया था और पौलुस, पतरस, कुवारी मरियम, उन सभी को ऊपर रख दिया और कहा, यहाँ तुम्हारा पादरी है, क्योंकि यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, और वह एक प्रेरित उत्तराधिकारी था, यही अब भी इस दिन तक कैथोलिक की शिक्षा है। और वे ऊपर मूर्तियों को लगाते हैं और उन्होंने क्या किया, मसीहत के अंदर मूर्ति पूजा लाया, कहलाने वाले नाम के मसीहत में, सच्चे मसीहत के अंदर नहीं, क्योंकि कुछ पेंटिकॉस्टल, अब याद है मैंने नहीं कहा बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, वे सभी में है, लेकिन परमेश्वर का वास्तविक सच्चा विषय पेंटिकॉस्ट था, वो था, है और हमेशा ही रहेगा, यही है जहाँ कलीसिया का आरंभ होता है, ठीक या पेंटिकॉस्टल सामर्थ के साथ। अब आप कहते हैं क्या यह सही है भाई ब्रैनम? मैं आपसे इतिहास को लेने के लिए कहूँगा और यहाँ समय की धारा में से होते हुए यहाँ तक देखें और यह पता लगाएं कि क्या उनमें से हरेक, क्या सच्चे परमेश्वर की संतान उस पेंटिकॉस्टल आशीषों को थामे हुए नहीं थे, अन्य जुबान में बात की, अन्य जुबान का अनुवाद किया, चिन्ह और अद्भुत कार्यों को किया था, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, प्रेरितों ने जो कुछ भी किया उन्होंने भी वही किया ठीक वहाँ से होते हुए। यही कारण है कि वहाँ इतिहास को पढ़ते हुए मैंने पॉलुस और इरेनियस को लिया और उसके आगे संत मार्टिन कोलंबा को लिया। उन पुरुषों में से हर एक को आगे बढ़ते हुए यहाँ इस काल में चिन्ह और अद्भुत कार्य थे। तो ठीक है, उसने कहा कि वे माइक का आवाज थोड़ा कम था, क्या ये बेहतर है? तो ठीक है, नहीं वे अपना सिर हिला रहे हैं, वे नहीं सुन पा रहे हैं बिल्ली। तो ठीक है, क्या आप, क्या ये अब, क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? अब ये कैसे है, क्या ये बेहतर है? हाँ, हर कोई कह रहा है सही है पॉल, ये आपके सम्मुख एक संकेत है। तो ठीक है, ठीक है। अब इस काल में यहाँ फिर जब उसने इस बहुत बड़ी चीज को बनाया और इस मनुष्य को सभी कलीसियाओं के ऊपर एक विश्वव्यापी बिशप के रूप में रख दिया, उन्हें बहुत सारे पैसे और इत्यादि चीजों को दिया और उनसे प्रतिज्ञा की और कलीसिया और राज्य को एक साथ एकजुट किया और कलीसिया को राज्य के ऊपर नियंत्रण करने दिया, उसे एक प्रधान व्यक्ति बना दिया। तो वास्तव में जो कॉन्स्टेंटाइन ने किया यह वही है जो हमने इस दूसरी कलीसिया में पाया, जिसे परमेश्वर ने कहा कि एलिया के दिनों में जो उन्होंने उस स्त्री इजाबेल से कष्ट उठाया उसके संतान को वश में करने के लिए, जिस बात ने अंधकार के काल में जगह ली थी। और यहाँ देखिए जहाँ पेंटिकॉस्ट अब है, ओ प्रभु बस इसे अंधकार में कर दिया और लगभग 1000 वर्षों के लिए यह जो लगभग 500 से लेकर 1500 तक था, ठीक यह 606 से 1530 है, 1520 जो बिल्कुल सही संख्या है, लेकिन ठीक 1000 वर्षों पर था। वे पूरी शतावट को लाएंगे, इतिहास को पढ़ें। अब एक कैथोलिक आपको बताएगा कि मसीह कलीसिया, वे मसीह कलीसिया थे, वे सांप्रदायिक मसीह कलीसिया हैं, लेकिन सच्चे पेंटिकॉस्टल को दबाया गया, मार दिया गया और हत्या कर दी गई और पोप और बिशप के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और इत्यादि खूनी जितने की वे हो सकते हैं। अब किसी दिन इससे मुझे अपने जीवन का दाम चुकाना पड़ेगा, देखिए ऐसा कहने के लिए, लेकिन यह एक बात निश्चित है, मैं जानता हूँ कि मैं किस ओर बढ़ रहा हूँ। अब मुझे पता है ये बस लहू के साथ टपकता ही रहता है, लेकिन अब वो समय आ रहा है जिसे आप उसके अनुसार देखेंगे कि राष्ट्र में क्या चल रहा है। यह लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, आप उस पर कभी पीछे मत हटना, यही सच है। ठीक इसके साथ बने रहें, उनकी तरह अपने लहू को मिला दें जो उस दिन में थे। अब यहाँ आप देखते हैं कि किस बात ने जगह ली है, फिर यहाँ इजेबेल की शिक्षा आती है। इजेबेल एक स्त्री थी, एक पागान, जो आहाब ने वही किया जो कॉन्स्टेंटाइन ने किया था, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए उसने इस स्त्री से विवाह किया और इसराइल में मूर्ति पूजा को ठीक उसी तरह लाया जैसे कॉन्स्टेंटाइन ने वहाँ पहले किया था, और पेंटिकॉस्ट लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को खड़ा किया, मैं चाहता हूँ कि आप यह ध्यान दें कि यह यहाँ किस तरह से बाहर आता है और लगभग पूरी तरह से धुंधला हो जाता है, उसके बाद यहाँ मुश्किल से शुरू होने लगता है और फिर आगे यहाँ आता है, और मैंने एक तरह से इसे चिन्हित किया है क्योंकि यह एक रविवार की रात के लिए एक महान विषय होगा परमेश्वर चाहे तो। अब मैं विश्वास करता हूँ कि हमने एक तरह से अब समझ लिया है कि हम कहाँ पर हैं। अब ठीक यहाँ पर वो अंधकार में काल है 1500 से 606 से लेकर 1520 तक, ठीक यहीं पर मैं इसे यहाँ पर रखूंगा, जिससे आप 606 से लेकर 1520 यही अंधकार का काल है, यह कलीसिया जो ठीक यहाँ पर है अंधकार में काल। अब ये कलीसिया जिस पर से अब हम बाहर आ रहे हैं वह लूथरन कलीसिया है। अब ज्यादातर सभी जो यहाँ पहले थे उन लोगों की मृत्यु हो गई, ये मनुष्य जैसे एरेनियस और मार्टिन और कोलंबा और वे धुंधले होते चले गए। और अब आप किसी को भी लें, जिस किसी को भी इतिहास से ढूंढना चाहते हैं, जिसे आप चाहें, यदि ये एक प्रमाणित इतिहास है तो, और जब वे आपको बताते हैं कि संत पैट्रिक एक कैथोलिक था, वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। संत पैट्रिक ने कैथोलिक कलीसिया का विरोध किया और कभी भी रोम नहीं गया और दृढ़ता से उनकी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया, यह बिल्कुल सही बात है। आप आज उत्तरी इंग्लैंड मतलब आयरलैंड जाते हैं और आप उसी बात को देखेंगे, संत पैट्रिक परमेश्वर का जन था, लेकिन संत पैट्रिक जब उसने वहाँ पर कहा कि उसने आयरलैंड में से सारे सांपों को बाहर खदेड़ दिया, यह एक कहानी थी। आप में से कितने लोगों ने कभी विलियम टेल के बारे में पढ़ा और सुना है? जिसने अपने लड़के के सिर पर एक सेब रखकर गोली चलाई, वह एक कैथोलिक कहानी है। ऐसा कभी नहीं था, एक शब्द भी ऐसा नहीं था। मैं ठीक वहीं पर था जहां पर यह होना था। यह वहां लिखा हुआ है, एक कहानी है, ऐसा नहीं है स्विट्जरलैंड में। बिली और मैं वहीं पर ल्यूसर्न झील के किनारे बैठे हुए थे जहां उसने किया। वो बात इस तरह से थी, उसने एक व्यक्ति को गोली मारी, ये सच बात है, लेकिन ना ही अपने लड़के के सिर पर एक सेब को। यह तो एक केवल कहानी है, अंधविश्वास और बातें हैं, ऐसा कभी नहीं था। उनके पास इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ये कहां हुआ या जो कुछ भी है जिसे उन्होंने कभी किया था, और ये वास्तव में उसे वहां बाहर फैला देते हैं और बताते हैं कि ये क्या था अब। लेकिन इसमें वास्तव में ऐसा कोई इतिहास नहीं है जो कहता है कि उसने ऐसा किया है। देखें, सो अब यहाँ पर इस कलीसिया काल में यही है जहाँ यह लगभग धुंधला हो गया, पूरी तरह से अस्तित्व से बाहर हो गया। अब इस दूसरे काल में सुधार का काल आता है। अब यहाँ ये चीजें लगभग काला और अंधकार में और लुप्त होने लगा, और इस तरह की बातों के 1000 वर्षों के बाद कलीसिया ने एरेनियस के दर्शन को खो दिया। वो एक महान व्यक्ति था, एक ईश्वरीय मनुष्य था, उसी तरह से ही वे सैकड़ों बहुत से बहुमूल्य संत थे जिन्होंने अपने जीवन को, लहू को उदारता की नाई दे दिया, उस रणभूमि में खड़े होकर जैसा कि वे मसीह के खातिर दे सकते थे, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे के लिए, अन्य जबान में बोलने के लिए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जीवन में जीते हुए और वहाँ उसकी दिव्य उपस्थिति में, जबकि वो खुद को मसीह कहने वाले लोग ही उन्हें सता रहे थे। ये सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, और यह एक नरक योग्य दुष्ट आत्मा ग्रस्त सेना है। मैं नहीं जानता जो भी है इस तरह से आकर और खुद का गठन करते हैं और अपने आप को बनाते हैं, खुद को भविष्यवक्तिनी कहकर बुलाती हैं, एक वचन का दिव्य अनुवादक कहते हैं कि यह उनके अलावा कोई नहीं जानता, खुद को ये कहती हैं, लेकिन वो एक झूठी हैं। आप समझे, वहाँ आप देखिए, लेकिन उसी समय पर वह सत्य के साथ उसके पास दूत है। सत्य हमेशा ही इस पर वापस जाएगा, समझे, हमेशा ही मूल की ओर वापस जाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी उससे नहीं बदलता है। अब और हमने यह भी देखा कल रात को, इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़े, इसलिए कि यह आपके हृदय में बस जाए, न कि केवल प्रतिछाया में, इजेबेल उसकी एक पुत्री थी, आपको याद है, और प्रकाशित वाक्य 13 ने कहा कि यह धर्म त्यागी कलीसिया रोम उसकी पुत्रियां थी, यह वैश्याओं की माता थी, क्या यह सही है? इजेबेल की एक पुत्री थी, और इजेबेल ने अपनी पुत्री के साथ क्या किया? देखें कि ये सारी बातें किस तरह से नमूना और प्रतिछाया है। इजेबेल ने देखा कि उसकी पुत्री ने योरम से विवाह कर लिया था, जो कि यहूदिया में यहोशापात का पुत्र था। इसराइल उस समय इस तरह से विभाजित हुआ था, यह यरूशलेम यहाँ है और यहाँ, यह यहूदिया यहाँ है तो ठीक है, अहाब यहाँ था और योराम यहाँ था तो ठीक है। इजेबेल ने इस पर विजय प्राप्त की, सारे इसराइल ने मूर्तियों को ले लिया, फिर एलिया और उस छोटे वफादार झुंड को छोड़ सभी ने, तो ठीक है। अब यहाँ इस ओर यहूदा के ऊपर योराम था, और जब अहाब से उसे बालक हुआ तो उसने इस लड़की को लिया और उसका बालक योराम के बेटे से कर दिया, मेरा मतलब योशापात के बेटे से जो योराम था, और यहूदा में मूर्ति पूजा को लाया और यरूशलेम में पागान की वेदियां रखी। बिल्कुल ऐसा ही कैथोलिक कलीसिया ने किया, वह संप्रदाय और इत्यादि की शिक्षा में अटक गई और पवित्र आत्मा को हटाकर कलीसिया से बाहर कर दिया, यहाँ उसकी पुत्री के साथ हो गए लूथरन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल और इत्यादि, ठीक वैसा ही उसने किया। बाइबल में कहा यह वैश्याओं की माता है। अब आप बस वचन में से होकर देखें, आप वचन में कोई भी बात, कुछ भी और भिन्न बात को देखते हैं, और इतिहास बिल्कुल उन्हीं बिंदु पर सही सही ठीक बैठता है। आप एक सज्जन की नाई मेरे पास आए, समझे, ये सही है, ये वहाँ नहीं है। ये संप्रदाय जहरीली चीजें हैं जो हमारे पास हमेशा प्रोटेस्टेंट बाद में रही थी, जो मनुष्यों को कलीसिया पर राज करवाने का प्रयास करते रहे हैं, एक दूसरी ही छवि को तैयार करते हैं, जैसे उस एक को सियासन पर बैठाना, मुख्य बिशप पेंटिकॉस के प्रमुख अध्यक्ष कहते हैं अच्छा अब मैं देखूंगा कि उसकी शिक्षा क्या है, ओ क्या उसने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, वह इसमें नहीं आ सकता है, नहीं श्रीमान भाइयों, आप इसे इनकार कर दें, और वो भी ठुकरा दिया गया है। मैं आपको समझा देता हूँ, आप में से कोई भी उस सभा में नहीं जाएगा, विरोध मत, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बीमार हैं, उनसे दूर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर क्या कर रहा है, यदि तुम हमारे चश्मे में से होकर नहीं देख रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। पशु के निमित्त एक छवि को खोते हैं और उस छवि के पास बोलने के लिए जीवन था, यह बिल्कुल सही है, और नहीं सोचना कि वह बोल सकता है, बस उसे एक बार जरा सा ऊपर क्रूस पर लगा लें, यकीनन मुसीबत में आ सकते हैं। मुझे याद है तुलसा ओल्काहोमा में, ओह मैं वहाँ एक बहुत ज्यादा गड़बड़ी में जा रहा था। वे संप्रदाय यहाँ वहाँ हिलने डुलने लगी थी और मैं एक दिन इस इमारत में बैठा हुआ था और मैंने एक दर्शन को देखा। मैंने देखा कि छोटा सुंदर छोटा सा बिल्ली का बच्चा और वह एक रेशम के तकिए पर लेटा हुआ था और वो बहुत ही प्यारा छोटा सा बच्चा था। और मैं वहाँ पर चलकर गया और मैं एक बिल्ली से डरता हूँ और मैं वहाँ पर चला गया और मैं उसे समेटने लगा और वो इस तरह से करने लगा था, पर पर आप जानते हैं कि वे किस तरह से अजीब सी आवाज करते हैं, आप जानते हैं। और मैं उसे उठाने लगा, मैंने कहा सुंदर छोटी सी बिल्ली, और उसने कहा पर बस मैं ठीक हूँ तुम जानते हो। और मैंने उसके तकिए के पीछे देखा, यह लिखा था पेंटिकॉस्टल बिल्ली का बच्चा। तो ठीक है, मैंने सोचा अब क्या ये अजीब नहीं है, और मैंने कहा इसे एक दर्शन होना है। और किसी ने तो कहा जब तक तुम उसके शरीर में बाल से इस प्रकार से घुमाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब यदि आप यह देखना चाहते हैं कि वह किस तरह से चीज से बना है तो उसके शरीर के बालों को उल्टी तरफ घुमाओ, समझे। सो जब मैंने उसके शरीर के बालों को उल्टी तरफ घुमाया, वे आंखें बाहर की ओर आने लगी जो हरे रंग की थी, और वह एक डरावने प्राणी की तरह वहां खड़ा होकर मुझ पर जोर जोर से आवाज को करने लगा जितना वह जोर से कर सकता था। देखो जरा सा उसके शरीर के बालों को उल्टी तरफ घुमाएं। उसे बताओ कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शैतान का है और कैथोलिक कलीसिया का है। देखो कि उसे क्या होने लगता है, समझे, उसके शरीर के बाल खड़े होने लगते हैं। मैं नीचे गया भाई जीन और उन्हें कहा नीचे, ओ भाई लियो, और उन्हें मैंने कहा मुझे यकीन है कि इसमें पेंटिकॉस्टल संप्रदायों का एक वास्तविक दर्शन था। अब तीसरा अध्याय, आइए पहले सर्दिस जो एक मरी हुई कलीसिया है, यह मरी हुई है क्योंकि वे इस समय के दौरान मारे गए थे। बस जीवन की छोटी सी अवधि, हम कुछ ही मिनटों में देखेंगे कि यह क्या था, बस थोड़ा कुछ। 1520 से लेकर 1750 यह सर्दिस कलीसिया काल था, और वो तारा या दूत, वह तारा जो उसके हाथ में था, जो दूत था या उस कलीसिया काल का संदेशवाहक था, क्या यह स्पष्ट रूप से समझ गया। वह तारा एक दूत था और एक दूत उस काल का संदेशवाहक होता है। तो ठीक है, तो ठीक है। अब हमने नीसिन परिषद के साथ समाप्त किया है। वहाँ दो पीछे मर गई और सारे सामर्थ और महिमा में आए, कलीसिया और राज्य एकजुट हो गए। और क्या कोई याद कर सकता है कि कल रात के विषय में क्या बताया था? उन लोगों में से कितनों ने यह सोचा था? सहस्रशताब्दी चालू थी और वे सभी वे मसीह के आगमन के बिना ही सहस्रशताब्दी को लाते हैं, समझे। सहस्रशताब्दी में मसीह के आगमन के मुद्दे पहली चीज, और उन दिनों में उनके पास, यदि आप इतिहास को लें तो आपको पता चलता है कि उनके पास झूठे यीशु उठ खड़े हुए थे और बाकी की हर चीज देखें। और उन्होंने यहाँ तक यह भी सोचा था कि पोप यीशु था, उसे कहते पादरी परमेश्वर के पुत्र के बजाय, जी हाँ बड़ा पवित्र देवता जैसे वो वहाँ बैठा हुआ होता है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, बाइबल कहती है कि जब यीशु आता है इससे पहले यह आता है, वहाँ झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और झूठे यीशु वहाँ उठ खड़े होंगे, यह सही बात है। तो यहाँ लेकिन मुझे अभी इस बात को आपके हृदय में डालने दो, वहाँ कभी भी एक यीशु इस धरती पर कदम नहीं रखेगा जब तक कि कलीसिया का रैप्चर नहीं हो जाता और चली नहीं जाती। अब आप बस इसे दिमाग में रखना, क्योंकि वहाँ झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, लेकिन यीशु धरती पर यहाँ नहीं होगा क्योंकि तुरही बजती है और वह कभी नहीं आता है। हम उससे हवा में मिलते हैं, कलीसिया जा चुकी है, और फिर जब यीशु प्रकट होगा तो ये वापस लौटना होगा। अन्य जाति हवा में उससे मिलती है, क्या ये वचन है, देखा, वे हवा में उससे मिलने जाते हैं और फिर हम ऊपर चले जाते हैं, और यीशु कभी भी धरती पर उसके पैर को नहीं रखता है जब तक कलीसिया का रैप्चर नहीं हो चुका होता है, और कलीसिया घर को उठा ली जाती है और स्वर्ग में विवाह भोज होता है, फिर यहूदी अवशेष के बाद वह वापस लौटता है। तो अब ये समाप्त हो गया था, नीसिन परिषद कलीसिया लगभग 1000 वर्षों तक पापल राज्य में अधीन रही थी। उन्होंने उन सभी को मार डाला था जो उनसे असहमत थे, ये सही बात है। आप या तो उसके अधीन आ जाओ या आपको आपको मार डाला जाता था, जैसे इजाबेल ने इज़राइल के लिए किया था। पवित्र आत्मा ने पूरी तरह से छोड़ दिया था, लेकिन बस इस काल के दौरान बहुत ही कम थे, जैसे कि एलिया और बचे हुए इज़राइल जिन्होंने बालाम के लिए घुटने नहीं टिकाए थे। यदि आप इसे आगे पढ़ना चाहते हैं तो यह पहला राजा 19वां अध्याय और 18वां पद है, जब एलिशा पीछे वहाँ गुफा में खड़ा था और उसने कहा, प्रभु उन्होंने आपके सारे नबियों को मार डाला है, उन्होंने सब कुछ किया है और मैं अकेला हूँ, मैं केवल एक ही बच निकला हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसे बताया कि उसके पास अब भी ऐसे कई सैकड़ों थे जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके थे वहाँ उस साधारण लोगों में। और सो अब सर्दिस हमने आरंभ किया है उसी शब्द सर्दिस का वो पहला पद। सर्दिस शब्द अंग्रेजी शब्दों में जिसका अर्थ है, यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है एक जो बच निकला, सच्चा सर्दिस था, एक जो बच निकला, यही सर्दिस का मतलब होता है। तो ठीक है, एक जो बच निकला, अब देखें, और एक जो बच निकला, अब हम उस पहले पर आरंभ करने जा रहे हैं, वही हम इसे सुधार का काल कहेंगे। और इस सुधार के लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त बात ठहरती है यदि हम इसे यह कहें तो, क्योंकि यह है सुधारक, बच निकलने वाले थे जो दूर निकल आए और इससे बच निकले। अब पहले पद को लेते हैं, सर्दिस की कलीसिया के दूत को लेख की जिसके पास परमेश्वर की सात आत्माएं और सात तारे हैं। यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अब सलामी, अब सात आत्माएं, सात आत्माएं और सात तारे हैं। वे आत्माएं दूत थे जो तारे हुए थे, जो संदेशवाहक थे। सात आत्माएं सात अलग अलग समय पर पवित्र आत्मा एक संदेशवाहक को अभिषेक करता है जो उसके दिन में का एक तारा था। एक आत्मा अनंत है और वो तारा जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि इन कलीसिया युगों के अंधेरे में प्रतिबिंब करे, जहां वे धूपदान और तारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो दूत, वो आत्मा, वो एक जो तारे हुए और इस तारे के जरिए से उस कलीसिया काल में पवित्र आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित किया, जिससे कि आप जान सकते हैं। मैं सोचता था कि सात आत्माएं कौन हैं? ये सात कलीसिया काल के सात संदेशवाहक हैं, समझे? अब और हर समय जब तारा दृश्य में आया, पवित्र आत्मा नीचे उतर कर आया और उस तारे का अभिषेक किया और उसे ठीक वैसे ही रखा जैसे वो पहला वाला तारा था। अब मुझे आपके लिए इसकी पुष्टि करने दें। पौलुस ने कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार का तारा था? क्योंकि याद रखें, शैतान भी एक तारा है, भोर का तारा। अब ध्यान करना, पौलुस ने कहा, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो एफिसियस कलीसिया का तारा था? उसने कहा, अब यदि आप जानना चाहते हैं कि ये सच है या नहीं, गलतियों 1:8 में पौलुस ने कहा वह बोलते हुए कि समय आने के बाद वह फाड़ने वाले भेड़िए होंगे और इत्यादि। उसने कहा, यदि एक दूत भी स्वर्ग से नीचे उतर कर आए और किसी अन्य सुसमाचार को सिखाता है, और वह जानता था यह मनुष्य जो आ रहा था जो एक दूत की तरह लग रहा था और एक बड़ा पादरी, उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कोई भी है, यदि कोई दूत या कभी भी आता है और इस सुसमाचार के अलावा किसी अन्य बात को सिखाता है जो हमने तुम्हें सिखाया है, उसे शापित होने दो। क्या यह सही है? पौलुस वो एक था जिसने उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने के लिए विवश किया था। यदि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं दिया गया था तो आओ और पवित्र आत्मा को पाने के लिए फिर से बपतिस्मा को लें। प्रेरितों के काम 19:5। वही वो एक था जिसने लोगों पर हाथ भी रखा और दान को और कलीसिया को व्यवस्था में रखा, चिन्ह चमत्कार के साथ, दैविक चंगाई, अन्य जुबान में बोलने के दान, अन्य जुबान का अनुवाद। क्या यह सही है? पहला कुरिन्थियों 12 देखो, पौलुस ने क्या कहा, पहला कुरिन्थियों 12, और आप इसे पाएंगे। उसने कलीसिया को रखा, परमेश्वर ने कलीसिया में इन महान दानों को रखा और पौलुस ने उन्हें व्यवस्था में रखा और उन्हें क्रम में रखा ताकि वे परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य को कर सकें। पौलुस ने यह कहा, तब यदि कोई भी मनुष्य, चाहे वह किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, तो वह आपको यह बताने की कोशिश करता हो कि अन्य जुबान में बोलने के लिए, अन्य जुबान का अनुवाद, दैविक चंगाई और अद्भुत कार्य और बपतिस्मा की नई पवित्र आत्मा की गवाही, उसे शापित होने दो। क्योंकि वही आत्मा जो पौलुस पर था, वही आत्मा होगा जो अगले कलीसिया काल के लिए भेजा गया था और वही आगे कलीसिया काल के अंत पर है। वही आत्मा, पवित्र आत्मा, क्या आप ये विश्वास करते हैं? यदि आप इसे ध्यान दें तो यह यहाँ लिखा हुआ है, लेखक ये जानता था, देखो वे सात आत्माएं, ध्यान दें, बड़ा अक्षर एस, पवित्र आत्मा, उनमें से केवल एक, वही पवित्र आत्मा सारे सात कलीसिया युगों में सात बार आता है, उसी प्रकाश को फैलाते हुए। आप इसे समझ लिया? सात कलीसिया काल सात बार यह पवित्र आत्मा इसी संदेश को आगे ले जाएगा, जिसने कोई भी हो जो इसे बदलता है उसके लिए शाप को घोषित किया गया था। अब देखें कि यदि यह पूरी बात के प्रकाशन के साथ फैलाता है, उसने कहा जो कोई भी इसमें से निकालेगा या जोड़ेगा उसी तरह उसका भाग जीवन की किताब से बाहर निकाला जाएगा, यही तब तक की पूरी बात को वहाँ सम्मिलित करता है। इसलिए आपके पास वहाँ पर कोई स्थान नहीं है कि कहीं भी और स्थान पर कूदें या निचोड़ें, देखें, क्योंकि ये ऐसा ही है, यही है जो परमेश्वर ने कहा, यही है जो आत्मा ने कहा और यही है जो कलीसियाओं ने कहा। अब यदि आप किसी अन्य प्रकार की शिक्षा को लागू करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा जो पौलुस ने सिखाया है, तो ये गलत है। बाइबल सही है, उसका जीवन, यीशु ने कहा मैं उसके भाग को जीवन की किताब से निकाल दूंगा। अब आप कहते हैं जीवन की पुस्तक का कौन सा भाग? ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है जो निश्चित रूप से चूक जाएंगे। आप ये जानते हैं क्या? आप नहीं जानते? क्या याद है कि एक रात को इसके बारे में शिक्षा दी गई थी? क्या आपको ये ध्यान आया? हो सके तो उस बात पर जाएं। ये अब तक ठीक नहीं दिखाई देता हो, सही नहीं लगता हो। देखा, यहूदा इस्करियोती शैतान का पुत्र था, वह देह में प्रकट हुआ, शैतान था। बाइबल ने कहा कि वह था, बाइबल ने कहा वह विनाश का पुत्र जन्मा था। इसे बस एक मिनट के लिए देखें। अब इस पर यीशु था, यहाँ वो उसके दाहिने हाथ में चोर था, यहाँ एक उसके बाईं ओर था। अब जब यीशु परमेश्वर का पुत्र था, क्या ये सही है? अब कुछ लोग केवल तीन क्रूस को देखते हैं, लेकिन चार थे, चार क्रूस। अब वो एक क्रूस क्या है? एक पेड़ है, क्या ये सही है? बाइबल ने कहा शापित है वो जो एक पेड़ पर लटकाया जाता है, और वो हमारे लिए शापित बना, वो एक पेड़ पर लटका, इसे काट दिया गया था, लेकिन यह एक पेड़ था, क्या ये सही है? ठीक है, यहाँ नीचे पहाड़ी के नीचे एक और खड़ा हुआ था, यहूदा ने अपने आप को एक गुल्लड़ के पेड़ से लटका दिया, क्या ये सही है? देखो यहाँ परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से आया, वापस स्वर्ग पर लौटता है, वो अपने साथ पश्चाताप किए हुए पापी को लेकर जाता है। यहाँ विनाश का पुत्र है, नरक से आया, वापस नरक की ओर लौट रहा है अपने साथ ले जाते हुए। यदि तू है बिना पश्चाताप का पापी, देखो बिना पश्चाताप का पापी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी। इस एक ने कहा हमारे पास प्रचार करते सुसमाचार का प्रचारक, हम इसी लायक हैं जो हम भोग रहे हैं, लेकिन इस मनुष्य ने तो कुछ नहीं किया। प्रभु मुझे याद करना जब आपके राज्य में आऊं। वो कौन था जो था थोड़ा कुछ कल रात को या परसों रात को? यह परमेश्वर का हाबिल है, यह शैतान का केन है। जैसे केन ने हाबिल को वेदी पर मार डाला, यहूदा ने वेदी पर यीशु को मार डाला, ये सही है। वो धुआं तब पीछे की ओर अदन में उठने लगा और ठीक यहाँ फिर से उठने लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओह यह महिमा में है, वो पुराना मार्ग, धन्य पुराना मार्ग, बस महिमा से भरा हुआ है। अब हम यहाँ पर पाते हैं, मुझे क्षमा करें, कि यह सर्दिस की कलीसिया दूत के निमित्त उसने कहा वो सात आत्माएं, जिसके पास सात आत्माएं हैं, सर्दिस की कलीसिया की दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की सात आत्माएं। और अब कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है? निश्चय ही परमेश्वर वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा सारे एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। अब लेकिन परमेश्वर ने इस पवित्र आत्मा का उपयोग कलीसिया के लिए, सात कलीसिया युगों के लिए, सात भिन्न भिन्न सुसमाचारक के प्रकाश में किया। आपने इसे समझा? सात कलीसिया काल। अब आप कहते हैं परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। ओह हाँ भाई, देखो उसने एलिया की आत्मा का उपयोग किया, और जब एलिशा चला, एलिया चला गया, एलिशा को इसका दुगना भाग मिला, और जब एलिशा बीमार हुआ और मर गया उसके बाद यह योना बपतिस्मा देने वाले पर फिर से वापस आया। वही बात उसे उसी तरह का कार्य करवाया जैसे एलिया ने किया था जंगल और इत्यादि में रहते हुए। क्या ये सही है? और अंतिम दिनों में फिर से आने की भविष्यवाणी की, देखना परमेश्वर आत्मा का ठीक आगे उपयोग करता है। और यीशु पवित्र आत्मा के साथ अभिषेकित था और वो अच्छा करते करते गया। क्या ये सही है? और वही आत्मा जो यीशु पर था पेंटिकॉस्ट के दिन कलीसिया में वापस आता है, ठीक अगले काल में वापस आता है, अगले काल में। और ये क्या है? ये वही है और वो एक ही स्वयं पवित्र आत्मा। ओह, आप नहीं देखते? परमेश्वर हमारे ऊपर पिता में, परमेश्वर हमारे साथ पुत्र में, परमेश्वर हम में पवित्र आत्मा में, ये तीन कार्य करने के स्थान है, न कि तीन ईश्वर, समझे? और वे तीन शीर्षक पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक नाम से संबंधित है, यीशु मसीह। तो ठीक है, अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सात आत्माएं कहती हैं, वो जो थामे रहता, दूसरे शब्दों में उसके संदेश वाहकों को थामे रहता है। संदेश वाहक जो पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक होंगे, उसी पवित्र आत्मा के साथ वो पौलुस जो पहला था अभिषिक्त था, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवा, ये सारे उसके दाहिने हाथ में हैं। ओ, अपने दाहिने हाथ से उनकी सामर्थ को और उनके प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। अब वो ऊपर उठा लिया गया और फिलिपुस ने कहा, जब वो मर रहा था, या स्टीफनुस ने कहा, मैं देखता हूँ आकाश खुल गया और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ था। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का बड़ा दाहिना हाथ है और वो उस पर बैठा हुआ है, लेकिन दाहिने हाथ का अर्थ है सामर्थ और अधिकार। वो शरीर जिसे परमेश्वर ने बनाया था न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, न ही तू मेरे प्राण को अधोलोक में छोड़ेगा, लेकिन उठाकर खड़ा करेगा और वेदी पर आत्मा के स्थान पर उसे स्थित करेगा। देखो, जब वे उसे वेदी पर बैठा हुआ देखते हैं और उसके हाथ में पुस्तक थी, और कोई भी मनुष्य धरती पर या धरती के नीचे या कहीं पर भी पुस्तक को देखने में सक्षम या योग्य नहीं था, यहाँ तक उस पुस्तक को देखने के भी योग्य नहीं था। लेकिन एक मेमना जैसे कि दुनिया की नींव डालने से लेकर घात हुआ था, बहुत पहले आरंभ में जब उसने पहली बार इस छुटकारा पाई हुई देह के बारे में सोचा, आकर और पुस्तक को उसके दाहिने हाथ से ले लिया जो सिंहासन पर बैठा था और बैठ गया स्वयं। आमीन, आप वहाँ है, यही वो वचन है, यह तो बस सुंदर है। देखें, अब वो जो जय पाता है मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन पर बैठता है, जैसे कि मैंने जय पाई है और अपने पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ। दूसरे शब्दों में, मैंने अपने देह के भीतर पवित्र आत्मा को लिया है, मैंने संसार की सभी चीजों पर जय पाई, परीक्षाओं में से होते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा और अधिकार को पा लिया है, और उसमें परमेश्वर की देह की परिपूर्णता वास करती है। स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ मेरे हाथ पर दी गई है, उसने कहा, सारी सामर्थ। यदि वो दूसरा व्यक्ति है तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन है, क्योंकि बाइबल ने कहा, यीशु ने उसके पुनरुत्थान के बाद कहा कि स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ दोनों की मेरे हाथ में दी गई थी। और यीशु अपने 10,000 गुना 10,000 संतों के साथ स्वर्ग से आता है, और बाइबल कहती है कि स्वर्ग एक आधे घंटे के लिए खाली था। तब ये महान व्यक्ति कहाँ पर है? वो परमेश्वर, देखा, वो मसीह में है निश्चय ही। और जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा जय पाते हैं, जैसे उसने जय पाई थी, हम उसके साथ बैठेंगे, जैसा कि वह दाऊद के धरती के सिंहासन को लेता है उसे बिठाने के लिए और उसके साथ राज्य करने के लिए, जैसे उसने वहाँ ऊपर किया था। आमीन। सारी धरती पर सामर्थ और अधिकार के साथ, सारी पृथ्वी, और वे पृथ्वी कह रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाढ़ जो रही है, परमेश्वर के पुत्र, क्योंकि आखिरकार इस संसार को परमेश्वर के लिए नहीं दिया गया था कि नियंत्रित करे। आइए देखेंगे कि ये सही है। धरती का ईश्वर कौन है? मनुष्य, यही उसका अधिकार है। सब धरती में का सब कुछ मनुष्य के अधीन है। पाप के जरिए से वह गिर गया, मसीह की छुड़ाने की सामर्थ के जरिए से वह फिर से वापस आता है। यह सही बात है, क्योंकि धरती मनुष्य की है, यह उसे दी गई थी, और वो हर चीज के ऊपर अधिकार रखता था। और सारी सृष्टि कह रही है, उस समय की बात जो रही है कि जब परमेश्वर के पुत्र फिर से प्रकट होंगे। ओह, वो मैं हूँ, ओह प्रभु, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण। अब हमारे लिए बेहतर होगा कि इसे अभी छोड़ दें, लेकिन संदेश वाहक उसके दाहिने हाथ में है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जहाँ कहीं भी उन्हें भेजता है, वे उसी चीज को बोलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मसीह में था, ओह, वह आत्मा जो मसीह में था, जब वो चला गया तो उसने कहा थोड़ी देर रह गई है और संसार कॉस्मोस ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है संसार की व्यवस्था न ही धरती की संसार की व्यवस्था मुझे अब और नहीं दिखेगा संप्रदाय या जो कुछ भी और है मुझे अब और नहीं दिखेगा फिर भी तुम मुझे देखोगे कलीसिया विश्वासी क्योंकि मैं व्यक्तिगत सर्वनाम सही है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ तक तुम में रहूंगा संसार के अंत तक यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है क्या आप इसे देखते हैं तो यदि ये मसीह का पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन पर उतर आया जिसने उन चीजों को किया यह मसीह का पवित्र आत्मा रहा है यहाँ आगे बढ़ता गया मसीह का पवित्र आत्मा अब भी यहाँ पकड़े हुए था मसीह का पवित्र आत्मा अब भी यहाँ पकड़े हुए था यहाँ आगे संसार के अंत तक वही पवित्र आत्मा जिसने पौलुस को पवित्र आत्मा से भर दिया और वे चीजें जो उसने की जो इस एक एरिनियस को पूर्ण पवित्र आत्मा से भर देगा मार्टिन को पूर्ण पवित्र आत्मा से भर देगा बाकी सभी को पवित्र आत्मा से भर देता है और ये आपको और मुझे पवित्र आत्मा से भर देता है और यह एक पेंटिकॉस्टल की आशीष एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया तक है अल्फा और ओमेगा अंत और आदि और सब दाऊद का मूल और वंश भोर का तारा शारण का गुलाब सोसन का फूल वो जो भी कुछ भी और है पिता पुत्र पवित्र आत्मा वह जो था जो है और आने वाला है अल्फा ओमेगा सब मिलाकर ओ प्रभु यह मुझे एक गाना गाने को लगाता है ओ तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ यीशु ने कहा कहाँ से तुमने कहा कि मैं आया क्या तुम मेरे पिता को जानते हो या तुम उसका नाम बता सकते हो उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ अंत से आदि मैं सारी सृष्टि हूँ और यीशु मेरा नाम है मैं हूँ जिसने मूसा से अग्नि की जलती झाड़ी में बात की मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ वो चमकता और सुबह का तारा ये सही है मैं शारण का गुलाब हूँ और कहाँ से तुमने कहा कि मैं आया मैं सारी सृष्टि हूँ लेकिन यीशु मेरा नाम है स्वर्ग और धरती के सारे परिवार उस एक के अंदर जुड़ते हैं विश्वव्यापी धन्य हुए पवित्र आत्मा से भर गए नीचे उतरे पवित्र आत्मा के द्वारा नामांकित हुए पवित्र आत्मा के द्वारा बोले पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे उस नाम के अंदर ये सही है परमेश्वर ने इसे स्वर्ग और धरती के सारे परिवार को दिया है और इसमें का सब कुछ हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकेगा और वहाँ आकाश के नीचे कोई और एक नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्यों को बचाया जाना चाहिए न ही ऐसा कि शायद ऐसा होना चाहिए लेकिन अवश्य ही बचाया जाना है ओह मैं इसे पसंद करता हूँ यह बस अच्छा है तो ठीक है उसके दाहिने हाथ में अब क्या आपने जान लिया यह एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया है सामर्थ चिन्ह चमत्कार वहाँ तब से लेकर किया जाता रहा है अब हम अंधेरे काल में से होते हुए गए हैं जहाँ यह लगभग पूरी तरह से ढक गया था अब आइए हम दूसरे पद को लेते हैं ओह मैं सोचता हूँ कि हम अब बस कुछ थोड़ा सा आगे जाएंगे इस एक पहले पद के साथ मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तेरे पास एक नाम है जिससे तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ यहाँ अगले कलीसिया की ओर जाएं आप देखेंगे लेकिन तूने मेरे नाम को इनकार किया है जो इसके बाद की कलीसिया है मेरे नाम से इनकार नहीं किया लेकिन इस कलीसिया में तेरे पास एक नाम है यहाँ देखना इस कलीसिया ने उसके नाम को रखा इस कलीसिया ने उसके नाम को रखा इस कलीसिया ने उसके नाम को रखा और यह कलीसिया एक अंधकार काल में से होते हुए चली गई और वहाँ इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया था जब वे इस ओर जीवन के लिए बाहर आते हैं तो पहले जो कुछ लोग बच निकले जब लूथर ने उन्हें बाहर निकाला तुम्हारे पास एक नाम है कि तुम जो जीवित हो लेकिन तुम मरे हुए हो अब यीशु नाम का उपयोग करने के छोड़ने के बाद उन्होंने किस नाम का उपयोग किया पिता पुत्र पवित्र आत्मा और ऐसी कोई चीज नहीं है यह एक मरा हुआ है यह एक मरा हुआ धर्मशास्त्र है मुझे बताएं क्या पिता एक नाम है यहाँ कितने पिता हैं अपने हाथ ऊपर उठाएं आप में से कितनों के नाम पिता हैं पुत्र और वे मनुष्य हैं ये वही है ऐसा नहीं है इसका नाम पवित्र आत्मा नहीं है यही है यह पवित्र आत्मा है वो नाम पवित्र आत्मा एक नाम नहीं है पवित्र आत्मा तो एक शीर्षक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए आप वहाँ देखते हैं यह बस बिना बुनियाद के है, जैसे अनंत पुत्रत्व जैसी कोई चीज नहीं है। एक पुत्र का कहीं तो जन्म होता है, अनंत पुत्र का जन्म कभी नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं है, जैसे कि मैंने एक रात को कहा, जैसे एक अनंत नरक के विषय में, आपको किस तरह से कभी अनंत नरक मिलता है? तब तो हमेशा के लिए एक नरक था। बाइबल ने कहा यह शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था, वह हमेशा ही एक नरक होगा। यदि हमेशा ही वो एक नरक रहेगा तो आरंभ में एक होना था। और क्या इसे वहाँ पर पहले किसने इस्तेमाल किया? जब वहाँ वो एलोहिम था, वो एक अस्तित्व में रहने वाला, जबकि वहाँ कुछ भी और नहीं है, तब तो नरक को उसके साथ वही होना था। समझे, नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था और सारे दुष्टों को इसमें डाल दिया जाएगा। यह बिल्कुल सही है, उन्हें दंडित किया जाएगा, हो सकता है 10 करोड़ वर्ष के लिए जो उन्होंने किया है उसके लिए। लेकिन एक समय आ रहा है कि उनकी दूसरी मृत्यु होगी, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। हर एक चीज जिसकी एक शुरुआत थी उसका एक अंत है। इसलिए जब हम अनंत जीवन को पाते हैं, हम विराट ज्योति को प्राप्त कर रहे होते हैं, जो वहाँ बहुत ही पहले उस ओर थी। इससे पहले वहाँ कभी एक अणु था, वो परमेश्वर का प्रकाश हमारे हृदय के अंदर आता है, जो हमें प्रकाशित करता है, जिससे हम यीशु को देखते हैं। बाइबल ने कहा हम उन सारी चीजों को नहीं देखते हैं, लेकिन हम यीशु को देखते हैं। अब उसने कहा मुझे पता है कि यह जो मैं वो हूँ जिसके पास 7 आत्माएं हैं, जिसे 7 कलीसियाओं के लिए भेजता हूँ। मैं तुम्हारे सारे कार्यों को जानता हूँ और इसके बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हें एक नाम मिला है जिससे तुम जीवित हो, लेकिन तुम मरे हुए हो। अब आप याद रखना, यह किसका काल था? मार्टिन लूथर, लूथरन का काल था। अब शुरुआत में उन्हें दोषी ठहराया गया था, उन्होंने यहाँ तक आरंभ भी नहीं किया था, वे आरंभ से ही मर चुके थे। उन्हें मरना नहीं था, वे आरंभ से ही मर चुके थे। देखिए, वे तो बस झपट कर बाहर निकाले गए। अब इस पर ध्यान दें। अब आइए अगले पद को पढ़ते हैं। जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अब वह लूथर के लिए बोल रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह लूथरन का काल था, जो सुधारक था। अब उसने क्या किया? तुमने एक गलत नाम को लाया है कि तुम जीवित हो, लेकिन तुम मरे हुए हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे फिर से संप्रदाय में वापस डाल दिया। तब मटका पतीली को काला नहीं कह सकता है। ढिंढोरा मत पीटो, कैथोलिक देखो, क्योंकि तुम उसी में वापस आ गए हो, उसके उन्हीं पंथों और नामों का उपयोग करते हुए। और तो लूथर ने बहुत से कैथोलिक के रीति रिवाज और बाकी सारी चीजों को बाहर लाया जो कैथोलिक कलीसिया के पास था, और अपने खुद के लिए एक नाम को ले लिया। देखें, तुम्हारे पास एक नाम है जो तुम जी रहे हो, जो इस मरे हुए 1000 वर्षों से यहाँ आ रहा है, और तुम अब भी उस नाम को पकड़े हुए हो। तुम्हारे पास एक नाम है, याद है, यह निश्चित करने के लिए यह सही है। दूसरी कलीसियाओं ने कहा तुमने मेरे नाम को रखा है। इस काल में उन्होंने इसे खो दिया और यहाँ बाहर आकर और कहा तुम्हें एक और नाम मिला है जो तुम जी रहे हो, लेकिन तुम मरे हो। ओह, तुम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन और पेंटिकॉस्ट, पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। समझे, उस पुराने मरे हुए संस्था और उन चीजों से बाहर निकलो जो एक कैथोलिक कलीसिया से संबंध रखती है, जो नष्ट होने जा रही है, और उसकी सारी पुत्रियां। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उन इस तरह की और इस चीज को, और वे पवित्र त्रिएकता कहते हैं। त्रिएकता, मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति यहाँ तक बाइबल में त्रिएकता शब्द को ढूंढ कर भी दिखाए और आकर मुझे इसके बारे में बताए। केवल त्रिएकता शब्द को ढूंढे, यहाँ तक ये वहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं। ऐसी कोई भी एक चीज नहीं है। अब और मरने पर है, उसे पकड़े रहो जो तुम्हारे पास है। लूथर ने तुम्हें बाहर निकाला है, उसे पकड़े रहो क्योंकि ये मरने पर है। वे तुम्हें ठीक वापस फिर से इस पर वापस शुद्ध करेंगे। उसे पकड़े रहो, यह मरने पर है। अब और मैंने तुम्हें अब तक परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं पाया है। क्या ये सुंदर नहीं है? ओह प्रभु, मुझे यह पसंद है। सिद्ध नहीं है, क्यों? उनका केवल धर्मीकरण हुआ था। लूथर ने धर्मीकरण का प्रचार किया, आपका पवित्रीकरण होना था और उसके बाद पवित्र आत्मा से भरा जाना था, और तब वे अपने आप के नहीं थे, वे पवित्र आत्मा के द्वारा उनमें सिद्ध थे। यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा नहीं कि वे मसीह लोग सिद्ध है, वे सिद्ध है, यह तो सिद्ध पवित्र आत्मा है जो उनमें है। देखा, यही है जो, जैसा कि मैंने कहा, यह पवित्र पर्वत नहीं है, यह तो पर्वत पर पवित्र परमेश्वर है, ना ही पवित्र कलीसिया, ना ही पवित्र लोग, लेकिन ये कलीसिया में और लोगों में पवित्र आत्मा है, यही वो पवित्र भाग है। देखो, और मैंने तुम्हारे कामों को सिद्ध नहीं पाया है, तुम सिद्धता तक नहीं आए हो, क्योंकि अब हम देखते हैं कि उनके पास ठीक यहाँ पर धर्मीकरण था, धर्मीकरण, और यह नहीं, मुझे क्षमा करें, धर्मीकरण ठीक यहाँ लूथर के नीचे है और पवित्रीकरण यहाँ है और यहाँ पवित्र आत्मा है। देखा, अब वे तीन तत्व जो उन तीन कलीसिया युगों में काम कर रहे थे, यही पूर्ण जन्म को निर्माण करते हैं। वे केवल माता के गर्भ में छोटे छोटे जीवाणु के रूप में गर्भ धारण हुए थे। ये सही है, पवित्र आत्मा जन्म के लिए आता है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जब एक स्वाभाविक जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है? पानी, अगली चीज लहू, क्या ये सही है? अगली चीज आत्मा, ये सही है? यीशु के शरीर से क्या निकला जब वो मरा? उन्होंने उसके बाजू को छेदा और पानी और लहू निकला, और मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, पानी, लहू, आत्मा। इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना, रोमियो 5:1, हमारे पास अपने परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के जरिए से शांति है। धर्मीकरण, पवित्रीकरण, इब्रानियों 13:12-13, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। लूका 24:49, और देखो, तब तक तुम इसी यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, पवित्र आत्मा के तुम पर आने के बाद तब तुम मेरे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में मेरे गवाह ठहरोगे। ना ही जब आप बिशप बनते हैं, ना ही जब आप डीकन बनते हैं, ना ही जब आप पास्टर बन जाते हैं, ना ही जब आप पोप बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो पवित्र आत्मा आप पर आता है तब तुम गवाह ठहरते हो। तुम केवल अपनी कलीसिया और अपने संस्था की गवाही को दे सकते हो। यदि तुम बस एक डीकन हो, या यदि तुम केवल एक पास्टर हो, या यदि तुम बस एक पोप हो, या यदि तुम केवल एक संस्था की गवाही को देते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तो तुम उसकी गवाही को देते हो, और जो काम उसने किए तुम भी करते हो, क्योंकि उसका जीवन आप में होता है। ओह 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 प्रभु, उसके जैसे, जी हाँ श्रीमान, ओ, मैं इसमें से और लूंगा। मेरा विश्वास है कि आपको वहाँ मिलता है। मैं बस इसके साथ अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। वे चीजें मरने पर हैं, उन्हें पकड़े रहो। अब वह यहाँ पर कहता है, अब तीसरे पद में, सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, मैं इसे पसंद करता हूँ, और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी पर तुझ पर आ पड़ूंगा। अपने धर्मीकरण को दृढ़ता से पकड़े रहे, इसके साथ चिपके रहो, वे लोग तुम्हें इससे पीछे न करने पाए। तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, वे उसी बाइबल को पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, देखना, लेकिन उन्होंने उस समय यह सब नहीं लिया क्योंकि यह उन पर प्रकट नहीं हुआ था, यह उनके काल के लिए नहीं था। यही कारण है कि वे पुनरुत्थान में ऊपर आ जाएंगे। वे उस उजाले में चले थे जो उजाला उन्हें चलने के लिए मिला था, इसलिए वे ऊपर आ जाएंगे। अब मैंने बहुत से पेंटिकॉस्टल लोगों को सुना है जो बपतिस्मा का प्रचार करते हैं, कहते हैं वे लूथरन और इत्यादि, वे ऊपर नहीं आएंगे। ओह जी हाँ, आप वहाँ के डॉक्टर हेगरे के बारे में छोटी सी कहानी को जानते होंगे। जब मैंने उससे कहा, उसने कहा, हम क्या हैं? मैंने कहा, आप जानते हैं, उन्होंने वहाँ बेथानी मिनियापोलिस में उस बड़े लूथरन सेमिनरी को खड़ा किया है। उसने कहा, अच्छा, तो हम लूथरन को क्या मिला है? मैंने कहा, तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा विश्वास है कि आपको मसीह मिला है। और उसने कहा, तो ठीक है, हम पवित्र आत्मा को चाहते हैं। उसने कहा, क्या आप सोचते हैं कि हमें यह मिल गया है? मैंने कहा, संभावित रूप से। और मैंने कहा, आप इस पर विश्वास करते हैं? उसने कहा, अच्छा, तो आपका क्या मतलब है? अब उनके पास वहाँ हजारों एकड़ जमीन है जो उनके छात्रों को, यदि वे अपने अपने भुगतान को नहीं कर सकते हैं तो वे उन्हें अपने लिए काम करवाते और मक्के को गाते हैं। मैंने कहा, तो ठीक है, वहाँ बस बड़ी बड़ी मेजे हैं। उन्होंने मुझे उस एक बड़े सेमिनार में वहाँ पर इन भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन के पदार्थ का रात्रि भोज दिया, और अब वे भले मनुष्य हैं, डॉक्टर हेगड़े यहाँ बैठे हुए थे और भाई जैक मूर यहाँ पर, क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ पास बैठाया था कि यदि उन्हें कुछ बड़े बड़े शब्द को बोलता है जिसे मैं नहीं जानता तो मैं अपने पैर से जैक को मारकर और उसे देखता कि उसने क्या कहा, आप देखिए। तो फिर मैंने कहा, वो मेरे बगल में बैठा था और उसने कहा ठीक है, हम जो करना चाहते हैं उसे यहाँ पर देखेंगे। कहा हम परमेश्वर के लिए भूखे हैं और कहा हमने पेंटिकॉस्टल पर वेदान उस किताब को पढ़ा है और कहा हम निकले। हम में से कुछ भाइयों के झुंड ने कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरी। हम उस व्यक्ति से मिले जिसने उस किताब को लिखा था और मैं उसे जानता हूँ। उसने कहा हम कुछ दानों को कार्य में होते देखना चाहते हैं। उसने कहा मेरे पास उनमें से कोई दान नहीं है। उसने कहा मैंने तो केवल उनके बारे में लिखा है। तो उसने कहा और कहा फिर जब हम वहाँ पर आए हैं और हमने इसे देखा है, हम भूखे हैं, हम परमेश्वर को चाहते हैं। और मैंने कहा तो ठीक है। एक बार एक मनुष्य आगे गया, आप जानते हैं वहाँ उसकी खुद की जमीन पर, आप देखो एक मनुष्य आगे गया और एक बड़े खेत को सींच रहा था और उसने सारी जड़ों को और इत्यादि सब निकाल लिया और फिर उसने मकई को बोया। हर एक सुबह वो दरवाजे के पास जाता और बाहर देखता कि क्या वहाँ कुछ दाने ऊपर आए हैं। पहली बात जो आप जानते हैं, एक सुबह दो छोटी पत्तियों की डंटल चिपकी हुई ऊपर आई थी। किसी ने कभी मकई को उगाया है? जॉर्ज राइट कहाँ है और वे रॉय स्लॉटर और वे, आप जानते हैं वे दो छोटी पत्तियों की डंटल चिपकी हुई होती है। ओ, उसने कहा मेरे खेत में मकई के लिए परमेश्वर की प्रशंसा हो। मैंने कहा क्या उसके पास मकई से भरा खेत था? उसने कहा तो एक तरह से था। मैंने कहा संभावित रूप से हाँ। मैंने कहा वो आप थे लूथरन, उस पहले सुधारक में उस छोटी पत्तियों की टहनी को लाते हुए। देखो तो ठीक है, मैंने कहा आगे और आगे वो मकई बढ़ने लगी। मैंने उस गिरावट के बारे में नहीं बताया, आप देखें, मैंने सिर्फ उस मक्के के बारे में बताते गया जो बढ़ गया। तो मैंने कहा मकई उगने लगी और थोड़ी देर बाद उस पर एक डंठल आ गई और उस डंठल के नीचे की और पत्ती को देखा और कहा हा हा हा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम पुराने औपचारिक लूथरन हो, समझे? कहा मैं हूँ, मैं उत्पन्न करने वाला हूँ। बड़ा मिशनरी समय हवा का जोखा आया और वो छोटी छोटी डंठल उस तरह से गिर गई और नीचे गिर गई। यह वेस्ली पवित्रीकरण है, समझे? यह सबसे बड़ा मिशनरी का काल था जो हमारे पास कभी रहा था, वेस्लियन कलीसिया काल। वेस्ली के समय के दौरान यहाँ तक इस काल में से भी बढ़ते हुए वेस्लियन कलीसिया काल, यह एक मिशनरी काल था और यह बिखरा हुआ था। यह क्या करता है? इसने इसे बिखेर दिया। देखो यहाँ तक प्रकृति इन तीनों की गवाही को देता है। ठीक यहाँ पर प्रकृति स्वयं आदि में परमेश्वर ने इसे बनाया इसलिए कि यह इस तरह से हो। आपके पास यहाँ तक बाइबल भी नहीं हो, आप प्रकृति को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, समझे? और फिर और थोड़ी देर के बाद ये वहाँ पर बाहर निकल आता है और क्या निकला? ऊपर मकई की एक गुठली आई, उस पर दाने थे। यह पेंटिकॉस्टल झुंड था। अब पेंटिकॉस्टल झुंड उसी तरह का एक झुंड था जो यहाँ था। यहाँ से उसके पास दो मक्के के दाने थे लूथर, यहाँ उसके पास डंठल थी वेस्ली, और यहाँ आगे उसके पास मकई का दाना था। क्या ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पीछे था, वही चीज? तो अब ठीक है, यह यहाँ क्या था? आप कहते हैं अच्छा, अब पेंटिकॉस्टल ने कहा मेरा मेथोडिस्ट या आप लूथरन से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आखिरकार वही जीवन जो दो छोटी टहनियों में था डंठल को बनाने में सहायता की, और जीवन जो डंठल में था मकई को बनाया। तो आप देखते हैं ये सब परमेश्वर की योजना है। संभवत रूप से उनके पास पवित्र आत्मा था, उसी तरह से वेस्ली पवित्रीकरण के नीचे, लेकिन आज इसने वापस लाया है अन्य जुबान में बोलते हुए और यहाँ वापस आरंभ को लौटाते हुए वही पवित्र आत्मा। आप देखें वे जो सच्चे हैं, आमीन, जी हाँ। तो ठीक है, जो तुमने सुना है उसे पकड़े रहो, कहीं ऐसा ना हो कि यह मर जाए। अब चौथा पद मैं सोचता हूँ कि ऐसा है, पर हाँ सर्दिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। अब इसमें से एक संप्रदाय को मत बनाओ, हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैंने गलत पद को पढ़ा है, क्या मैंने नहीं पढ़ा? या तो मैंने नहीं, जी हाँ हाँ ये सही है, जी हाँ, तो ठीक है। हाँ सर्दिस में कुछ ने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया, उनमें से कुछ ऐसे थे जो अब भी उस चीज के आगे नहीं झुके और खुद को शुद्ध और साफ रखा। वो पुराने पद चिन्ह वहाँ पीछे पेंटिकॉस्ट की ओर आत्मा से भरे हुए। तब उनमें से कुछ बहुत से जब लूथर का काल संप्रदाय होने लगा, वे क्या करते हैं, वे सीधे वापस आरंभ में चले गए, जैसे बाइबल में कहा अपनी माँ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उन्होंने सीधे वापस पीछे जाकर एक संप्रदाय को आरंभ किया, लेकिन उनमें से कुछ तब बाहर ही खड़े थे जो कि ऐसा नहीं करेंगे, वे परमेश्वर के लिए बाहर ही बने रहे। कहा, उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नाम है और वे मेरे सामने चलने के लिए योग्य हैं जो सफेद वस्त्र में है। एक संप्रदाय मत बनाओ, अब निकोलियन की शिक्षा को मत लेना, अपने संप्रदाय को फिर से आरंभ न करें, लेकिन बस परमेश्वर में स्वतंत्र रहें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, उनमें से कुछ अभी भी बाकी हैं। अब पांचवा पद, मैं सोचता हूँ जिसके पास कान है वो सुन ले। आइए देखें, नहीं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके सर्वदूतों के सामने मान लूंगा। अब कुछ नाम, बहुत थोड़े, कुछ ही बचे हुए जो बच गए थे जिन्होंने उसे नहीं लिया, कैथोलिक की शिक्षा के द्वारा अधिकार में नहीं लिए गए थे, तो ठीक है। अब हम सुधारकों की बात करते हैं। मैं चाहूंगा, मैं लूथर की पृष्ठभूमि को छोड़ता हूं ताकि मैं इसे यहां ला सकूं। अब अगला पद कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर उन्हें इस निकोलियों से बाहर बने रहने के लिए यह चेतावनी देने का प्रयास कर रहा है, वहाँ से दूर रहो, अपने वस्त्रों को संसार की किसी भी चीज से दूर बिना दाग के रखो, केवल उसी में स्वतंत्र रहें, और वह उनका नेतृत्व करेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा। अब यही वो पहली शुरुआत है। अब सुधारक के द्वारा मेरा अर्थ है जो बचकर निकले, यहाँ तक वे जो सर्दिस कलीसिया में भी बच निकले थे। क्या आप समझ सकते हैं मेरा क्या मतलब है? वे जो तब भी उस भयानक चीज से बच निकले थे, अब हम इसे फिर से कल रात को ले लेंगे और मैं इसे ठीक यहाँ आगे इसे पेंटिकॉस्टल काल में लेकर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में ये ऐसा है। अब इन चीजों में से कुछ है जिसकी हम यह बात करेंगे, वे इससे कैसे बच निकले, अब हम इसे अगले काल के लिए ले लेंगे। देखिए, हमें इसे एक साथ लाने के लिए इस बात को लेना होगा। यदि आप नहीं लेते हैं तो आप लोगों को देने से चूक जाएंगे। अगले कलीसिया काल में इसे उत्तम बनाने के लिए आप देखें, आपको उन्हें ये बताना है जिससे कि उन्हें पता चले बाइबल यहाँ उसी प्रकार से बताती है। देखो तो ठीक है, अब वे जो बच निकले ये वही हैं जिसके बारे में वह बात कर रहा है। यह जो ठीक यही है, यहाँ यह छोटा सा वह झुंड जो धर्मीकरण के द्वारा जी रहा है। अब देखो, वे बाहर आए, उन्होंने उजाले को देखा, लूथर के ठीक चमकाने, लूथर की मृत्यु के बाद, ना ही लूथर, लूथर ने कभी कोई संगठन नहीं बनाया, यह तो उसके बाद का वो झुंड था। वेस्ली ने कभी कोई संगठन को नहीं बनाया, यह तो उसके बाद का वो झुंड था। वे पेंटिकॉस्टल के पुराने संस्थापकों ने कभी एक संगठन को नहीं बनाया, यह तो उनके बाद का झुंड था। यह तो वे लोग हैं जो इसे करते हैं। देखो, यह दूसरा दौर है जो इसे करता है। वो उजाले का सच्चा दूत एक संगठन को कभी नहीं बनाएगा, और आप इस पेंटिकॉस्टल काल पर देखेंगे उस संगठन के अंत में भी क्या आता है। देखो, जब पवित्र आत्मा हमारे लिए इसे प्रकट करता है, अब उसने कहा तुम्हारे पास थोड़ा सा ही उजाला बचा हुआ है, बस थोड़ा सा ही, यह खत्म होने पर है, यह घटता जा रहा है, ये बस धर्मीकरण ही है। किसी भी तरह से वे आपको घुमा सकते हैं, तुम्हारे पास फिर भी कोई जीवन नहीं है क्योंकि तुमने गलत नाम को लिया है, लेकिन तुम्हें कम से कम तुम्हें बाहर खींच कर निकाला गया है। देखो, तुम रोमन कलीसिया से बच निकले हो, तुम उस सारे मत सिद्धांत से बच निकले हो, और तुम कम से कम उससे दूर निकल कर आए हो। अब आप उसी बाइबल को पढ़ रहे हैं, अब लेकिन वही बाइबल जो पवित्र आत्मा सिखाती है, उसने कभी भी आपको दोषी नहीं ठहराया जो उनके पास था। कहा, अब यही उसे पकड़े रहो जब तक मैं नहीं आता हूँ। देखिए, केवल उसे पकड़े रहें। अब कलीसिया काल लगभग 1520 से आरंभ होता है, जब रोमन विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया पूरे जोरों पर थी। यह अक्टूबर के 31 तक चला। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो अक्टूबर के 31 तारीख तक 1570 AD, जब जर्मनी के विटेनबर्ग में मार्टिन लूथर ने उस कलीसिया के दरवाजे पर 95 लेख किले को ठोक दिया, उस समय से लेकर सुधारक का समय आरंभ हो गया था। क्या आपने उन तारीखों को जान लिया? मुझे इसे फिर से लाने दें ताकि आपको पक्का हो जाए। अक्टूबर 31 तारीख 1570 के एडी जब मार्टिन लूथर ने जर्मनी के विटेनबर्ग विटेनबर्ग कलिसिया के दरवाजे पर 95 लेख किले को ठोक दिया। उस तारीख से लेकर सुधारक आ गए, आग ऊपर उठना आरंभ हो गई। उसने वहाँ खड़े होकर कैथोलिक कलीसिया का विरोध किया जो इस प्रकार से उसके हाथ में था। उसने कहा, क्या यह मसीह की पवित्र देह होगी? यह तो एक पपड़ी और कुछ मदिरा है, और धड़ाम उसने इसे फर्श पर फेंक दिया। ये सही है, उसने कैथोलिक कलीसिया का विरोध किया और जो आरम्भ हुआ उस वक्त कुछ लोग बाहर खींच कर आ गए। तो ठीक है, यह आरम्भ हो गया था। लेकिन यह एक राजनीतिक शक्ति की एक लड़ाई की तुलना से अधिक सच्ची मसीही कलीसिया की लड़ाई थी मसीह दर्जे के लिए। उन्होंने तो केवल कलीसिया से बाहर आने के लिए और एक और कलीसिया बनाने के लिए एक राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी भी सुधार नहीं किया। कैथोलिक कलीसिया से बाहर आकर कलीसिया में पवित्र आत्मा और सामर्थ को वापस लाने के लिए कभी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इसे अस्वीकार किया था। यह एक राजनीतिक संगठन था। यह वो जगह है जहां निश्चित रूप से यह वचन सही बैठता है कि तेरे पास एक नाम है जिससे तू जीवित रहता है और मरा हुआ है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बस प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को बाहर लाया। ऐसा ही है, उसने एक पुत्री को एक कलीसिया से बाहर लाया, वहाँ से उसने वेश्या को वेश्यावृत्ति से बाहर लाया। बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ था, उसने अतल्याह को इजेबेल से बाहर लाया। अब जो कोई भी सुधारकों के विषय में पढ़ता है वह जानता है कि ऐसा ही है, क्योंकि वह बस साधारणता से कुछ पुराने अवशेषों और क्रम को और रीति रिवाज उसने बस उन्हें ध्वस्त कर दिया। लेकिन जहाँ तक कलीसिया में पवित्र आत्मा को वापस लाना जैसे ये यहाँ पहले था, उसने इसे नहीं किया। नहीं श्रीमान, यह आत्मिक लड़ाई से बढ़कर एक राजनीतिक लड़ाई थी। यह पवित्र आत्मा के बजाय राजनीतिक थी। उसने अभी तक कलीसिया में प्रवेश भी नहीं किया था। ओ भाई, वो वापस नहीं आया था। वह यहाँ पर आता है, ना कि वहाँ पर। अब यह एक बड़ी राजनीतिक संगठन का जमाव था, लेकिन यह पवित्र वचनों और पवित्र आत्मा के लिए नहीं था। यह एक राजनीतिक संगठन का जमाव है जिसे उसने कुछ क्रूस के पुराने अवशेष से छुटकारा पाने के लिए किया था, और जय हो मरियम और उन सब से। लेकिन उसने फिर भी एक कैथोलिक की शिक्षा को बाहर लाया। उसने फिर भी इसे बाहर लाया। आप इसे क्या कहते हैं, पवित्रीकरण की सभाएं, जो कुछ भी ये वहाँ पर होता था। जब ईस्टर की सुबह वहाँ पर नीचे जाते और पास्टर उन्हें कुछ क्रिसमस की शुभकामनाएं कहता, आप जानते हैं, आप उन्हें उसके बाद फिर नहीं देखेंगे अगले क्रिसमस के समय आने तक। उसने कहा, आप जानते हैं, वो ओह पुष्टिकरण की सभा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, उन्हें वहाँ नीचे ले जाते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं, उन्हें पहला प्रभुबोध देते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं। पुष्टि करने जैसी कोई चीज नहीं है। पुष्टि करने के लिए बाइबल में केवल एक ही चीज बताई गई है जिससे पुष्टि होती है। जब बाइबल में जब परमेश्वर ने चिन्ह और अद्भुत कार्यों के साथ अपने वचन की पुष्टि की है, यही वो पुष्टि करना है। एक लूथरन कलीसिया से संबंधित होना यह पुष्टि नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने आप में अपने वचन की पुष्टि करता है और प्रभु उनके साथ काम करता था। मरकुस 16 चिन्हों के साथ वचन की पुष्टि करते हुए यही पेंटिकॉस्टल कलीसिया की पुष्टि करना है। यह पुष्टि परमेश्वर खुद के जीवित होने की पुष्टि करता है। कलीसिया में एक अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर उस रूप में अन्य जुबान में बोलते हुए, अन्य जुबान का अनुवाद करते हुए और उन्हीं कामों को करते हुए जो उन्होंने आरंभ में किए थे। क्या मैं आपको थका रहा हूँ? तो ठीक है, अब ध्यान दें, उन्होंने पवित्र आत्मा की बेदारी को वापस नहीं लाया। उन्होंने एक नए कलीसिया काल को लाया। वे उस एक को खींच कर वापस लाए, वो एक जो रोमन सिद्धांत की संगठना से बच निकला ताकि प्रोटेस्टेंट सिद्धांत की संगठना बनाए। बस इसी काम को उन्होंने किया, सीधे कड़ाई से उछलकर आग के अंदर। देखो, ये सही है, बिल्कुल ठीक। इजाबेल तब एक पुत्री को जन्म देती है, और अब ऐसा नहीं सोचना कि मैं इसे बस होशियार बनने के लिए कह रहा हूँ। मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि बाइबल ने ऐसा कहा है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 17 में कहा, वह वैश्याओं की माता थी। यीशु ने यहाँ कहा, बस जैसे इजाबेल थी वैसा ही वह भी होगी, और उसने उन पुत्रियों को सामने लाकर रखा जिन्होंने उस देश को दूषित किया था जो दूषित नहीं था। अब यह वही है जो प्रोटेस्टेंटवाद ने परमेश्वर की सच्ची आत्मा के लिए किया था। इसने उस चीज को दूषित कर दिया और इसे वापस फिर से ठीक दूसरे संगठन में रख दिया, जो कि यदि परमेश्वर ने चाहा तो रविवार की सुबह मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वे पशु के निमित्त एक छाप को बनाते हैं और वो पशु रोम था और उन्होंने इसी तरह एक छवि को बनाया है। यह क्या था? एक संगठन। ओह, मुझे आशा है कि यह लोगों के हृदय के अंदर चला जाएगा। और आप सोचते होंगे कि मैं अपने पूरे जीवन में संगठन से इतना अधिक क्यों लड़ा हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन ये मेरे भीतर कुछ तो पुकार उठता है, मैं इसकी सहायता नहीं कर सका। मैंने सोचा मैं हमेशा महिलाओं को इतना नीचे क्यों करता था, समझे, मेरे सारे जीवन में। नहीं, मेरा मतलब सच्ची महिलाओं से नहीं है, मेरा मतलब है कि ये इस तरह से होना चाहिए। आप जानते हैं, नैतिक प्रकृति और सब कुछ उनमें से खत्म हो चुकी है। आप जानते हैं, जो एक तरह से मुझमें कुछ तो है। जब मैं छोटी उम्र का लड़का था तो मैं उन महिलाओं को वहाँ सड़क पर आते देखता था और वे जानती थी कि उनका पति काम करने के लिए बाहर गया है और वे वहाँ पर किसी पुरुष के साथ होती नशे में सड़क के किनारे पर, और वे उन्हें वहाँ सड़क पर यहाँ और वहाँ चलते उन्हें घर पर लाने के लिए, अपने पति के लिए खाना बनाने के लिए, उन्हें आपे में करें। मैंने कहा कि वे उन्हें भेदने के लिए एक स्वच्छ बुलेट के लायक भी नहीं है। मैंने कहा कि वे जानवरों की तुलना से भी ज्यादा गिरे हुए हैं इस तरह की चीज को करने पर। और जब मैं 17-18 वर्ष का था तो मैं एक सड़क पर आगे एक लड़की को देख रहा था। मैं सड़क की दूसरी तरफ चला गया। मैंने कहा वो दुर्गंध से भरा सांप है, देखा, और मैं वास्तव में घृणा करने वाला हुआ करता था। लेकिन जब मैंने अपने हृदय में परमेश्वर को पाया तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसके पास वहाँ कुछ रत्न है, उसके पास कुछ सच्ची महिलाएं हैं, वे सब खुद को इस तरह से अशुद्ध नहीं करेंगी। परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद हो। जब मैं वहाँ अफ्रीका में था, जब मैं वहाँ स्विट्जरलैंड में था और जब मैं रोम में था, तो मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, हे भाई ब्रैनम, बताएं, अमेरिका में आप लोगों के पास कोई भी लज्जाजनक महिलाएं क्या बिल्कुल ही नहीं है? वहाँ से हरे गीत जो यहाँ पर आता है, वहाँ आपकी महिलाओं की कुछ तो गंदगी होती ही है। मैंने कहा वह तो अमेरिकी है, लेकिन हमारे पास वहाँ पर एक और राज्य है, यह परमेश्वर का राज्य है। वे स्त्रियाँ सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वे हैं। बाइबल ने कहा, वहाँ नबियों ने कहा, मैं सोचता हूँ कि लगभग यशाया के 5वें अध्याय में था, मुझे पक्का नहीं है, यह वहाँ 5वें या 6वें अध्याय में होगा, उसके बारे में बोलते हुए, धन्य है वो सियोन की पुत्री जो उन सारी चीजों से उस दिन में बच निकलेगी। वो सड़क पर वहाँ किस तरह चलती हैं? वे अपने लंबे जुराबे नीचे की ओर मोड़े हुए होती हैं। जब वे चलती हैं, तो वो ठुमकने लगती हैं, इस तरह से मटकती हैं, और उन चीजों को वे करेंगी ठीक बिल्कुल उसी तरह से वे अभी कर रही हैं, बिल्कुल पूरी तरह से वैसे ही एक पुरुष के जैसे वस्त्र पहनती हैं जो परमेश्वर के लिए घृणित है। मैंने कुछ समय पहले एक धार्मिक समाज को देखा, वहाँ जाकर एक किसी तरह का एक छोटा सा भोजन जो उनके यहाँ लगभग हर रात होता है, और ये सभी महिलाएं इन वस्त्रों को पहने हुए अंदर जा रही होती, या वो क्या चीज है जो आप उन्हें कहते हैं, न ही छोटी निकरें, लेकिन अन्य तरह का वस्त्र होता है, जी हाँ, वे पैजामे की तरह की पैंट होती है, या वे वहाँ की चीजें, सभी पर उन्हें एक पैजामे की तरह पैंट चाहिए, तो ठीक है भाई, उसका किनारा लगभग इतना चौड़ा होता है, ये सही है, सीरा जो आता है पैरों पर लटकता रहता है, जो आपके पैर पर होता है, और ठीक ऐसा ही है जो उन्हें चाहिए, ये सही है। लेकिन ओह, आप कहते हैं तो ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि एक स्कर्ट पहनने वाली महिला के लिए इसकी तुलना में इसे पहनना अधिक सभ्य है। परमेश्वर ने कहा यह एक स्त्री के लिए ऐसे वस्त्र पहनना उसकी दृष्टि में एक घृणित बात है, और जब एक स्त्री एक पुरुष की तरह अपने बाल को काटती है, परमेश्वर एक स्त्री को स्त्री की तरह देखना चाहता है कि वो एक स्त्री की तरह वस्त्र पहने, एक स्त्री की तरह व्यवहार करे, और वह नहीं चाहता है पुरुष एक लंबे बाल की कलम के साथ हो, इस तरह से नीचे की ओर लटकती हुई कलम, और फिर जैसे उसके सिर के पीछे एक बदक बैठी हुई हो, वो उससे चाहता है कि वह एक पुरुष की तरह दिखे। जी हाँ श्रीमान, ओह, वे इतना स्त्रियों की तरह कपड़े पहनते हैं, इतना तक कि शायद ही उन्हें पता हो कि वे स्त्री हैं या पुरुष हैं। यह दयनीय बात है, इन लंबे बाल को रखने वाली और ढीली पोशाक पहनने वाली विरोधी पीढ़ी और सब कुछ आज हमारे पास है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम अंत समय में जी रहे हैं। वहाँ इस संसार में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय परमेश्वर के लिए कि इस पर अपना क्रोध डाले और इसे जलाए। बस ऐसा ही है, एक न्यायी और पवित्र परमेश्वर और कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने यीशु मसीह के लहू का तिरस्कार किया है, उन्होंने खुद को हठ धर्मी किया है, वे एक संगठन के अंदर चले गए हैं, और वो बुजुर्ग कुछ पवित्र पिता फादर उसके वे बुजुर्ग अविवाहित पुरुष अपने कॉलर को मोड़े हुए होते हैं आकर और उन्हें कहते हैं, मेरे धन्य बच्चों, इसका मतलब एक सुअरी कह रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आज रात हमें जो चाहिए वो है बाइबल और पवित्र आत्मा की ओर वापस फिरे भाई, और पुनरुत्थित मसीह की सामर्थ, चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कामों को करते हुए जो कलीसिया के अंदर वापस आ रही है। आमीन, यही सुसमाचार है। जी हाँ, आगे लाया तो हाँ, ये सही है, इसने किया। उस बेदारी ने वहाँ कुछ बहुत ही अच्छी चीजों को किया उस बेदारी ने, लेकिन इसने पवित्र आत्मा को आगे नहीं लाया, उन्होंने इसे आगे नहीं लाया उस लौदीकिया काल में आने तक, आगे पेंटिकॉस्टल काल में। लेकिन इसने एक चीज को किया, इस बेदारी ने कुछ चीजों को किया जो उसने कहा, अब इसे मरने मत दो, मजबूत करो और इसके साथ जोड़ते रहो। देखा, इसने फिर से लोगों के लिए एक मुफ्त बाइबल को लाया, लूथरन काल ने एक मुफ्त बाइबल को लाया, उन्होंने अपनी प्रेस छपाई की मशीन बनाई और दुनिया को बाइबल देना आरंभ किया। परमेश्वर लूथरन को उसके लिए आशीष दे। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने बाइबल को फिर से आम जनता के हाथ में रख दिया, जो बस केवल याजक के लिए ही हुआ करती थी, यहाँ तक इसे कभी देखना भी नहीं था, क्योंकि ऐसा पोप ने कहा था और वो ईश्वर था, इसलिए उसने जो कुछ भी कहा इसे किया गया। सो अब लूथरन की बेदारी, जिसे वे मजबूत करना चाहते थे, अब आपके हाथ में बाइबल है, अब इसे पढ़ें, इस पर विश्वास करें, इसे अलमारी पर ना रखें। कहते हैं ठीक है, हमारे पास एक बाइबल है जिससे तुम्हारा वहाँ कुछ भी भला नहीं होने वाला है। वह पेंटिकॉस्ट में आज भी बहुत सारे लूथरन हैं, बाइबल को अपने पास रखते हैं और उस बात को लेते हैं जो कोई भी इसके बारे में बताता है। भाई, वचन को पढ़ो, वचन में ढूंढो, क्योंकि वही वो वचन है जो मेरे बारे में बताते हैं, यीशु ने कहा। उसमें आप सोचते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है, यही वो बात है जो आपको करना है, वचन को पढ़े। अब उसने धर्मी जन से कहा, इसे पकड़े रहो, इसे जाने मत देना। और एक और चीज जिसे वो चाहता था कि पकड़े रहें, उनके पास उनमें थोड़ी शक्ति बची थी, जो थी लूथरन की बेदारी। दूसरी चीज जो उसने की थी, इसने उजाले के लिए धर्मीकरण की शिक्षा को लाया। कैथोलिक धर्मीकरण को नहीं लेते हैं, ये कैथोलिक कलीसिया है, बिल्कुल उस याजक की तरह। उन्हें उसे कुछ समय पहले यहाँ उस जगह से दूर रखना था। उसने कहा, कैथोलिक कलीसिया के अलावा और कहीं भी कोई उद्धार नहीं है, उद्धार मसीह में है, ना कि कैथोलिक कलीसिया में, ना ही प्रोटेस्टेंट कलीसिया में, यह मसीह में उद्धार है। लेकिन कैथोलिक विश्वास करते हैं कि वे परवाह नहीं करते हैं कि बाइबल क्या कहती है, ये तो ऐसा है, कलीसिया क्या कहती है, समझे। आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई जरिया नहीं है, वहाँ उनसे बात करने का कोई और तरीका नहीं है, वे परवाह नहीं करते, उनके पास वे आपसे उनके कैथोलिक की शिक्षाओं पर बात करेंगे, ऐसा ही कुछ भी। लेकिन आप बाइबल पर आते हैं तो वे बस इसे छोड़ देते हैं, यह तो ऐसा है, कलीसिया क्या कहती है। लेकिन यीशु ने कहा, इसी बात पर यीशु ने खुद कहा, यदि कोई भी मनुष्य कुछ भी इसमें से निकालेगा या इसमें कुछ भी जोड़ेगा, तो वह अपने भाग को जीवन की किताब से निकाल देगा। यीशु ने कहा, हरेक मनुष्य का शब्द झूठा और मेरा वचन सत्य होगा, आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। क्या ये सही है? ओह, ये वहाँ पर है भाई, मैं परमेश्वर के वचन में एक विश्वास करने वाला हूँ, ये सही है, और न केवल उस वचन पर जो परमेश्वर वहाँ बोलता है। फिर मैंने स्वर्गीय पिता से मांगा कि मुझे उस पवित्र आत्मा को दे, ताकि उस वचन की पुष्टि करे, ताकि मसीह को मुझ में जीवित बनाए, जिससे मैं जान जाता हूँ कि मुझे अनंत जीवन मिला है, इसलिए नहीं कि मैं इसके योग्य हूँ, क्योंकि उसके अनुग्रह ने मुझे इसे दिया है। यही वो चट्टान है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, उसने कहा। तो ठीक है, धर्मीकरण तो ठीक है, यह तब की बात है जब उन्होंने पहले से ही कुछ आगे लाया था जिसे उन्हें मरने नहीं देना था, जो पहले था। उन्होंने फिर से अपने हाथ में उनकी बाइबल को लिया था, लूथरन ने ऐसा किया। और एक और बात, उनके पास शिक्षा थी, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना, यही लूथरन ने सिखाया, हर एक जन जानता है कि यह उसकी शिक्षा थी। धर्मी, क्या आप इसे नहीं देख सकते हैं कि यह कितना सिद्ध है? इसके बाद वैसली पवित्रीकरण के साथ आता है, उसके बाद यहाँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के साथ पेंटिकॉस्टल आता है, बस सिद्ध रूप से। अब मैं तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, अब तुम उन्हें पकड़े रहो, और उन्हें मरने मत दो। यदि तुम उसे पकड़ कर नहीं रखते हो तो मैं जल्द ही एक चोर की नहीं आऊंगा और तुम फिर से संप्रदाय में वापस चले जाओगे। और उन्होंने यही किया, बिल्कुल इसी तरह वापस उसमें चले गए। तुम फिर से निकलियों में वापस आ गए क्योंकि तुम सीधे वापस एक संप्रदाय के अंदर चले जाओगे। पकड़े रहो, उस बाइबल को पढ़ते रहो और धर्मीकरण को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन वहाँ से थोड़े से बचे हुए बाहर आए, थोड़े से शेष। उसके बाद पहले आता है लूथर और फिर जिंगली आता है और आगे कैल्विन और आगे और इत्यादि आगे वेस्ली की ओर। लेकिन वहाँ से थोड़े से बचे हुए आए जिसे पवित्रीकरण सिखाया गया और पवित्रीकरण से बाहर छोटा सा अवशेष बाहर आया जो पवित्र आत्मा में चला गया। देखिए वो थोड़े से बचे हुए साथ ही वहाँ से आगे आते हुए उसे जीवित रखते हैं तो ठीक है। लेकिन तीसरा, उन्होंने अपने साथ बहुत सारे पागान की तरह ही शिक्षा को बाहर लाया, जैसे कि संप्रदाय, झूठे बपतिस्मा, अब वे छिड़काव करने और इस तरह की इत्यादि बातों के साथ वे बाहर आए। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उन्होंने कैथोलिक के सिद्धांत को लाया। सही मायने में, सही मायने में वे नाम के साथ सही बैठ रहे थे उसके साथ। यीशु ने यहाँ क्या कहा, तुम्हारे पास एक नाम है जिससे तुम जीवित हो लेकिन तुम मरे हुए हो, यह सही है तो ठीक है। चौथा, यह सच है कि उन सुधारकों ने उनके बहुत से चमकाए हुए अवशेषों और रीति रिवाजों और इत्यादि को खत्म कर दिया, लेकिन यह कलीसिया में विफल रहा और सुधारक के द्वारा जो वापस लौटाया जा रहा था उन चिन्हों के साथ संपूर्ण समाचार की शिक्षा को लौटाया जा रहा था, ये विफल रहा। यह कभी भी लूथरन कलीसिया के पास नहीं था, उनके पास यह कभी नहीं था और वेस्लियन के काल में उनके पास कभी नहीं था, यह केवल उनके पास इस लौतकिया काल के अंत में ही था। अब जब हम उसमें आते हैं तो हम सीधे वचनों में वापस आएंगे और आपको ठीक ठीक इसे बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से इसकी प्रतिज्ञा की थी। उसके पास उन्होंने पवित्र आत्मा की बेदारी को वापस नहीं लौटाया था। वे मूर्तियों से हट गए और मूर्तियों से दूर हो गए, यह सच है। उन्होंने मूर्तियों को कलीसिया से बाहर कर दिया। मरियम और यूसुफ और पतरस और पौलुस, वे सभी वे मूर्तियों से मुड़ गए, लेकिन वे मसीह के जी उठने की ओर नहीं मुड़े। लूथर ने उन्हें मूर्तियों से मोड़ दिया, लेकिन कुछ अधिक उसमें चले गए, जैसे कि राजनीतिक या एक संप्रदाय या जैसे संगठन जिससे कि खुद को बस एक दूसरा संगठन बना सके, पहले की तरह एक छवि को और संप्रदाय के द्वारा इसे विकसित होने का प्रयास कर सके। और अब वे फिर भी लड़ रहे हैं, मेथोडिस्ट अभी भी, सारे बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट बनना चाहते हैं और सारे लूथरन चाहते हैं कि सारे बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट लूथरन बन जाएं, पेंटिकॉस्टल चाहते हैं कि सारे बैप्टिस्ट लूथरन और बाकी के सब पेंटिकॉस्टल बन जाएं। देखो, आप केवल अपने संप्रदाय में जोड़ते रहते हैं, लेकिन पहले स्थान में यह परमेश्वर की योजना नहीं है। लौटाया जाना परमेश्वर की योजना थी जिससे कि उसे वापस लेकर आए जो आदि से था। देखो, उसे पुनरुत्थित करता है। यदि यह पुस्तक जमीन पर गिरती है तो अब एक और पुस्तक को लेते हैं और जिससे कि उस पुस्तक की जगह को ले, तो ये लौटाया जाना पुनरुत्थान नहीं है। आपको उसी एक पुस्तक को ऊपर उठाकर ऊपर रखना है, आमीन। तो यदि कलीसिया अंधकार काल में से होते हुए मर गई और पूरी तरह से यहाँ पागान में वापस आ जाती है, तो लौटाया जाना यह तो एक सुधारक होता है जो सुधार करने के लिए है, लेकिन सुधार किया जाना और फिर से जन्म लेना दो अलग अलग चीजें हैं, समझे। उन्होंने सुधार को वापस लाया, सुधार को करते हुए उनकी बहुत सारी मूर्तियों और इत्यादियों को निकालते हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी कलीसिया में पवित्र आत्मा को वापस नहीं लाया। ओह, प्रभु का नाम धन्य हो। भाइयों, बहनों, क्या आप इसे नहीं देख सकते हैं? उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा को वापस नहीं लाया, क्योंकि यही है जो वास्तव में सच्चे सुसमाचार के प्रकाश को लाता है। अब अपने दिमाग पर जोर डालें, वो एक जो सच्चे सुसमाचार के प्रकाश को लाता है वो यहाँ नीचे कलीसिया का दूत है। अब हम इसे रविवार को देखेंगे। अब वे उस उज्यालों को चमकाएंगे उन उज्यालों के ऊपर और मसीह उज्यालों को, लेकिन वे हरेक जन उस संगठन में वापस चले जाएंगे, लेकिन वहाँ एक आ रहा है जो उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। जी हाँ श्रीमान, और वो वहाँ से एक बचे हुए को झटका देगा, बस उतना ही निश्चित रूप से जितना कि मैं इस पुलपिट में खड़ा हूँ, ये सही है। और वो सीधे वापस आरंभ में जाएगा और मैं पुराने नियम और नए नियम से वचनों को लूंगा और आपको साबित करूंगा कि वो ऐसा करेगा जो लौतकिया की कलीसिया का दूत है। यह सही है सीधे मूल पर वापस जाकर और इस चीज को यहाँ फिर से पुनरुत्थित करेगा और पुनरुत्थान यहाँ इस दिन में आ जाएगा। ये सही है, लेकिन लूथर ने कलीसिया को झटका दिया। वो जो एक बच निकले, वो एक बच निकले, एक कदम पवित्री धर्मीकरण, वे जो एक बच निकले उसने पागानवाद से एक कदम और आगे रखा। यह ठीक बात है, अगली बार वो दो कदम को आगे रखता है, ऐसा ही है, बिल्कुल वैसे ही। क्या आपने वहाँ बाइबल में ध्यान दिया, वहाँ मंदिर के पीछे से पानी निकल रहा है और उसने कहा कि उसने अपने घुटनों तक पानी को देखा, उसके बाद अगला उसकी कमर तक पानी, और उसके बाद अगला यह उसके सिर के ऊपर तक चला गया। लेकिन जब यह उसके सिर के ऊपर से चला गया तो उसे एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ा था जहां वह तैर सकता था। देखो, उसे तैरना था। तो हम अब एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, ये या तो तैरना है या डूबना है, बस ऐसा ही है। यह आपको डुबा देगा और आपको पूरी तरह से बहा देगा, या तुम्हें उस एक में लेकर आएगा। तो यह तैरना या डूबना है। हालेलुया। ओह, मैं पवित्र आत्मा के लिए बहुत खुश हूँ, क्या आप नहीं हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। वे कौन? ना ही यह, वो, या वह, या वह। बहुत ही खुश कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। हालेलुया। उनमें से एक, उनमें से एक। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। क्या ये अच्छा नहीं दिखाई देता? सुनना, वे ऊपरी कोठरी में एकत्र हुए थे, उसके नाम में सारे प्रार्थना कर रहे थे, उनका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ था और सेवा के लिए सामर्थ आ गई। अब उस दिन पर उसने उनके लिए जो किया वो तुम्हारे लिए भी वही करेगा। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। ओह, उनमें से एक, मैं उनमें से एक हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। हालेलुया। उनमें से एक, उनमें से एक। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। क्या वे धर्म विद्यालय में जाते थे? जी नहीं, उनमें से कुछ तो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे। ये सही बात है, पतरस नहीं लिख सकता था। बाइबल ने कहा कि वो एक गवार और अनपढ़ मनुष्य था, वो और यूहन्ना, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान दिया था क्योंकि वे जानते थे कि वे यीशु के साथ रहे थे। ये लोग हो सकता है भले ही सीखे ना हो, पढ़े लिखे या अभिमानी संसारिक प्रसिद्ध लोग, ओ परमेश्वर धन्य हो, मैंने बहुत से फलाना और फलाना को देखा है। उन सभी ने अपने पेंटिकॉस को पाया है, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया और वे अब बता रहे हैं दोनों दूर दूर तक, उसकी सामर्थ अब भी वही है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। ओह, उनमें से एक, उनमें से एक। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ, उनमें से एक, उनमें से एक। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। क्या आप इससे खुश नहीं हैं? मैं उनमें से एक होने के लिए बहुत ही खुश हूँ। मैं बल्कि उनमें से एक होना चाहूँगा उसकी तुलना में जो भी मैं जानता हूँ। ओ, मैं उनमें से एक होना चाहूँगा उसकी तुलना में कि मैं उस संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति बनूं या सारे संसार का राजा बनूं। मैं, यदि प्रभु यीशु यहाँ चलकर आता है, कहता है मैं तुम्हें वापस 20 वर्ष की उम्र में बदल दूंगा और तुम्हें एक प्रधान बनाकर सारी दुनिया का एक राजा बना दूंगा और तुम्हें इस धरती पर 10,000 वर्ष जीने के लिए दे दूंगा, तुम 20 वर्ष की उम्र में बने रहोगे, कभी बीमार होने का दिन नहीं होगा, एक हृदय का दौरा और आनंद और सब कुछ होगा और सारी धरती का राजा जीने के लिए 10,000 वर्ष। या तो क्या आप उनमें से एक होना चाहेंगे और बस आपको इसमें से होकर संघर्ष करना है जैसे आप कर रहे हैं? मैं कहूँगा मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। 10,000 वर्षों के बाद, उसके बाद क्या? लेकिन ये तो अनंत है। ये किस तरह आया भाई? ओह, यह लहू के जरिए से आया है। ये सही है, इसने एक लंबे रास्ते को तय किया है और ये परमेश्वर के देहधारी होने के और हमारे बीच में डेरा करने के द्वारा आया। बहुत पहले एक चरनी में, मैं जानता हूँ कि यह वास्तव में ऐसा है, एक बालक ने जन्म लिया ताकि मनुष्यों को उनके पापों से बचाए। यूहन्ना ने उसे किनारे पर देखा, मेमना जो हमेशा के लिए है, ओ मसीह जो कलवरी के क्रूस पर चढ़ा, ओ मैं उस गलील के मनुष्य से प्रेम करता हूँ, गलील से, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, पवित्र आत्मा को भीतर रखा। ओ मैं प्रेम करता हूँ, मैं उस गलीली के मनुष्य से प्रेम करता हूँ। वो स्त्री कुएं पर है, उसने उसके सारे किए हुए पापों को बताया। वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। और किस तरह उस समय उसके पांच पति थे, उसने हर एक पाप को क्षमा किया था और भीतर एक गहरी शांति को रख दिया। वो पुकार उठी, आओ इस गलील से मनुष्य को देखो। ओ मैं उस गलील के मनुष्य से प्रेम करता हूँ, गलील से, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, पवित्र आत्मा को भीतर रखा। ओ मैं प्रेम करता हूँ, मैं उस गलील के मनुष्य से प्रेम करता हूँ। एक चुंगी लेने वाला वहाँ एक दिन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चला गया। वो पुकार उठा, हे प्रभु मुझ पर दया करे, उसके हर एक पाप को क्षमा किया था और भीतर एक गहरी शांति को रखा। वो पुकार उठा, आओ इस गलील से मनुष्य को देखो। मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं करते? लंगड़े को चलने को लगाया था, गूंगे को बात करने को लगाया था, समुद्र पर प्रेम के साथ सामर्थ को बोला गया था, और अंधे को देखने को लगाया था। मैं जानता हूँ कि ये केवल हो सका उस गलील के मनुष्य की दया से। इसे मेरे साथ गाएं। ओ मैं उस गलील के मनुष्य से प्रेम करता हूँ, गलील से, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, पवित्र आत्मा को भीतर रखा। ओ मैं प्रेम करता हूँ, मैं उस गलील के मनुष्य से प्रेम करता हूँ। क्या आप इसे पसंद नहीं करते हैं? ओ प्रभु ये उत्तम पवित्र आत्मा का सुसमाचार, ओ किस तरह से मैं इसे पसंद करता हूँ। मैं उसे पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ, और मैं आज रात बहुत खुश हूँ कि मैं उनके साथ उस गिनती में हूँ। और हम भाई बहन की नाई एक साथ हैं, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन, जो कुछ भी और है। परमेश्वर ने हमें जीवन के हर एक पड़ाव से बाहर निकाला है और हमें यह पवित्र आत्मा की इस महान संगति के लिए लाया है। न ही किसी संप्रदाय से संबंधित है, यह तो उनके ऊपर है कि वे क्या करते हैं, लेकिन हम एक रहस्यमयी राज्य में हैं। हमने एक पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के रहस्यमयी देह में बपतिस्मा लिया है। कौन है? मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और जो कोई भी हो, वो आए। यीशु ने कहा, वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएंगे और उनमें से कोई भी नहीं छूटेगा, और मैं उन्हें अंतिम दिन पर फिर से जिलाऊंगा। ओ प्रभु, हम अक्सर यहाँ वेदी पर एक पुराना गीत गाया करते थे, नहीं जानता कि हम इसे गा सकते हैं या नहीं। स्थान है, हाँ वहाँ स्थान है मेरे लिए, वहाँ झरने पर स्थान है। क्या आप उन पुराने गीत को पसंद करते हैं? कोई तो हमें एक स्वर देना, कोई तो जो इसे जानता हो कैसे आरंभ करना है। हमारा पियानो वादक कहाँ पर है? क्या वो बहन यहाँ है, या भाई टेडी, या उनमें से कोई भी यहाँ है? वे हैं? ओह मैं उसे कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। स्थान है, स्थान है, हाँ वहाँ स्थान है, वहाँ तुम्हारे लिए झरने पर स्थान है। स्थान है, स्थान है, हाँ वहाँ स्थान है, वहाँ तुम्हारे लिए झरने पर स्थान है। क्या आप उन पुराने गीतों को पसंद करते हैं? और मैं भी इसे पसंद करता हूँ। वहाँ नीचे क्रूस पर जहाँ मेरा उद्धार करता मरा, वहाँ नीचे पापी से शुद्ध होने के लिए मैं रोया। ओ मेरे हृदय में लहू लगाया गया था, उसके नाम की महिमा हो। उसके नाम की महिमा हो, उसके बहुमूल्य नाम की ओ महिमा। आइए अब हमारी आंखें बंद करें और इसे गाएं। ओ मेरे हृदय में लहू लगाया गया था, उसके नाम की महिमा हो। मैं बहुत ही अद्भुत रूप से पाप से बच गया। यीशु इतनी मधुरता से भीतर बस गया। वहां उस क्रूस पर जहां वो मुझे अंदर ले लिया, उसके नाम की महिमा हो। उसके नाम की महिमा हो, उस बहुमूल्य नाम की, उसके नाम की महिमा हो, बहुमूल्य नाम की। वहां मेरे हृदय में लहू लगाया गया था, उसके नाम की महिमा हो। अब जब हम इस अगले पद को गाते हैं, तो आपके सामने, आपके पीछे, आपके पास में किसी के साथ हाथ को मिलाएं। इस झरने के पास आओ, इतना भरपूर और मीठा, अपने दीन प्राण को उद्धारकर्ता के चरणों पर निकाल कर रखो। ओह, आज ही मैं डुबकी को लगाओ और पूरा बन जाओ, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो, उस बहुमूल्य नाम की, उसके बहुमूल्य नाम की महिमा हो। वहां मेरे हृदय में लहू लगाया गया था, उसके नाम की महिमा हो। ओ, मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं करते? उसके नाम की महिमा हो, बहुमूल्य नाम की, उसके नाम की महिमा हो, वाह, मेरे हृदय में लहू लगाया गया था, उसके नाम की महिमा हो। ओ प्रभु, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, या आप नहीं हो? बहुत ही खुश कि मैं इस झरने के पास आ सकता हूँ, जो इतना भरपूर और मीठा है, अपने निर्धन प्राण को उद्धारकर्ता के चरणों पर निकाल कर रख सकता हूँ। मुझे याद है एक दिन जब एक छोटा सा लड़का लगभग 18 वर्ष का था, प्रभु से भाग रहा था। मैं पश्चिम की ओर गया। मैं चाहता था, मेरे पिता एक घुड़सवार थे, और मैं चाहता था कि वहाँ जाकर घोड़ों को दौड़ाऊं। मेरे हृदय में बस कुछ तो भूख थी। ओह, मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ बैप्टिस्ट प्रचारक के पास गया। उसने कहा, उठो और इतना कहो, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हम तुम्हारा नाम पुस्तक पर लिख देंगे। इससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं हर जगह गया। कोई तो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट उसे मिलने के लिए गया, एक भला मनुष्य, भाई बारकर, प्यारा भाई। उसने कहा, बिली, आओ और प्रभु के शब्द को स्वीकार करो, मेरे पास अब है। लेकिन उसने कहा, शब्द का दिन? और मैंने कहा, ओह प्रभु, यह बस अब भी इसे नहीं करते हैं, आप देखना। मैं पश्चिम की ओर चला गया, और मैंने सोचा उस रात वहाँ पर दूर चला गया। हम यहाँ वहाँ घुड़सवारी करते थे, और आप जानते हैं, आप काठी, घोड़े के पीठ पर बैठने की सीट और अपने तंबू की बैग को लेते हैं, और इस पर लेट गया, और एक तकिए के लिए अपनी काठी, घोड़े की पीठ पर बैठने की सीट का उपयोग करते हैं। और उस रात में पीछे देवदार के पुराने पेड़ के नीचे लेटा था, और मैं दिन के पहरे पर था, और तो वे रात के चरवाहे जो वहाँ थे पशुओं को नीचे ला रहे थे, और वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसे स्लिम बुलाते, जो टेक्सास से था। वहाँ उसके पास एक गिटार था, और वो बजा रहा था, उसके नाम की महिमा हो। वहाँ एक और लड़का था, उसके पास कंघी थी, वो कागज के एक टुकड़े के साथ इसे बजा रहा था। वे अन्य गीत को गा रहे थे, घुड़सवार चरवाहे के गाथा गीत को वे ये गा रहे थे नीचे वहाँ उस क्रूस पर। ओह, मैं पलट गया, अपने कंबल को इस तरह अपने सिर के ऊपर डाल दिया। मैंने वापस बाहर देखा, आप जानते हैं, और दिखाई दे रहा था कि वे तारे नीचे लटक रहे थे, वहाँ नजदीक उन पेड़ों के और उन पहाड़ों के ऊपर, उन देवदारों के पुराने सनातन की धीमी सी आवाज, मैं उसे वहाँ चिल्लाते हुए सुन सकता हूँ, आदम तू कहाँ है। लगभग उसके 3 हफ्ते बाद मैं वहाँ शहर में चला गया, और सभी चरवाहे नशे में थे, और मैं शराब नहीं पीता। मुझे उन्हें घर ले जाना पड़ता था, उन्हें कार पर, उन्हें किसी भी तरह से कार में ढेर करना पड़ता था, और वे वहाँ से बाहर निकलकर और एक दूसरे की पैर की उंगलियों पर गोली मारने लगते, और ऐसा ही सब इत्यादि, और इससे बचना खतरनाक होता। वहाँ से होते हुए एक सीधी रेखा खींचते, और एक दूसरे से $5 का दाव लगाते, वे इस पर चल सकते हैं तो, और वे उस तरह से किनारे पर नहीं चल सकते, जैसा आप जानते होंगे। और इसी तरह से ऐसा था जब तक कि वे होश में नहीं आ जाते, उनको अपने पैसे मिल जाने के बाद। और मैं वहाँ नीचे था, और वे सारे शराब पी रहे थे। मैं अलग होकर और बैठ गया। मैंने सोचा, ओ प्रभु, लगभग 35 वर्ष पहले, या 35 वर्ष, मैं सोचता हूँ 35 वर्ष पहले। और मैं वहाँ पर अलग बैठ गया। फिनिक्स तब एक छोटी सी जगह थी, हम वेकनबर्ग से वहाँ पर आए। मैं वहाँ पर नीचे बैठा हुआ था और वहाँ एक छोटी सी स्पेनिश लड़की वहाँ से पलट कर आ रही थी और मैं अपने सिर पर इस बड़ी सी टोपी को पीछे रखकर वहाँ बैठा हुआ था। वह पास से गुजरी और उस छोटे से रुमाल को गिरा दिया। आप जानते हैं, मैंने कहा, हे, तुमने अपना रुमाल गिरा दिया। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने वहाँ सड़क पर कुछ शोर को सुना और वहाँ नीचे चला गया और एक बूढ़े चरवाहे ने वहाँ उससे परिवर्तित करके घोड़ों के बाड़े तैयार किए थे। उसके पूरे चेहरे पर फुंसी के निशान थे और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। एक गिटार बजाते हुए गा रहा था, उसके नाम की महिमा हो। ओ प्रभु, उसके गालों पर आंसू बहते जा रहे थे। वो रुक गया और कहा, भाई, तुम नहीं जानते कि यह क्या है जब तक तुम इस अद्भुत मसीह को प्राप्त नहीं कर लेते हो। उसके नाम की महिमा हो। और मैंने उस बड़ी टोपी को नीचे उतार लिया और दूर चला गया। ओ प्रभु, आप उससे छिप नहीं सकते। आपको बस जितना हो सके पूरी तरह से बाहर आकर और उसे अंगीकार करना है। ओ, वह अद्भुत है। जी हाँ, वह है। मैं बहुत ही अद्भुत रूप से पाप से बच गया। यीशु इतनी मधुरता से भीतर बना रहता है। वहाँ उस क्रूस पर जहाँ उसने मुझे अंदर ले लिया। उसके नाम की महिमा हो। उसके नाम की महिमा हो। नाम की उसके नाम की महिमा हो। ओ, मेरे हृदय में लहू को लगाया गया था। उसके नाम की महिमा हो। ओ, इस झरने के पास आओ। आओ, इतना भरपूर और मीठा। अपने निर्धन प्राण को उद्धारकर्ता के चरणों पर निकाल कर रखो। ओ, आज ही मैं डुबकी लगाओ और पूरा बन जाओ। महिमा हो। आइए अब हमारे सिरों को झुकाएं, अभी हमारे हाथ को ऊपर उठाएं। उसके नाम की महिमा हो। महिमा महिमा। हे परमेश्वर, बहुमूल्य नाम। वहाँ मेरे हृदय में लहू को लगाया गया था। उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हो। आइए खड़े हो जाएं। ओह, बस एक मिनट, बस जरा रुकना।
हाँ
प्रभु,
हाँ
Wrangle thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. For I say that around this world tonight there are darkness and confusion, but I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
अब वहाँ यदि कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा कि वह क्या था, यह पेंटिकॉस्ट है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। यीशु ने कहा, सारे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। वे नई जबान के साथ बोलेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। ये सारी बातें जो वह बोलता है, ये पूरी हो जाएंगी। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। क्या उस वचन की पुष्टि करते हुए पवित्र आत्मा को आते हुए देखते हैं? एक उजाला, इसे ले लो, इसे संदेह न करें, बस इसे ग्रहण करें, और वो एक आपके साथ बालक की नई व्यवहार करेगा और आपको सही तरीके से लेकर आएगा। क्या पवित्र आत्मा का ऐसा करना मधुर नहीं है? पवित्र आत्मा हम पर है। मुझे बाइबल में एक समय याद है, वे नहीं जानते थे कि किस तरह से वो बात आ रही है। शत्रु आ रहा था और पवित्र आत्मा उस तरह से एक व्यक्ति पर उतर आया और उन्हें बताया बस बिल्कुल ठीक कहाँ जाना है, और वे वहाँ चले गए और परमेश्वर ने दूसरी सेना को गड़बड़ी में डाल दिया और उन्हें पराजित कर दिया। ये सही है। ओ, हम अब भी बाइबल के दिनों में रहते हैं, क्या हम नहीं रहते? आमीन, हमेशा ही, जब तक पवित्र आत्मा वहाँ पर है। ओ, आइए हम खड़े हो जाएं, जैसे हम गाते हैं, यीशु के नाम को साथ, संदेश को याद रखें, दुख और शोक की संतान ये आपको आनंद और दिलासा देगा। इसे ले जहाँ कहीं तुम जाते हो। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओ कितना प्यारा, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। बहुमूल्य नाम, वो बहुमूल्य नाम कितना प्यारा, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। यीशु के नाम को अपने साथ ले, हर फंदे से एक ढाल की नाई, जब परीक्षाएं इर्द गिर्द तुम्हारे बढ़ती हैं, उस पवित्र नाम को प्रार्थना में उच्चारण करें। परमेश्वर की स्तुति हो। बहुमूल्य नाम, ओ कितना प्यारा, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओ कितना प्यारा, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। इस पद को सुनना, यीशु के नाम को अपने साथ लें, हर एक फंदे से एक ढाल की नाई, जब परीक्षाएं इर्द गिर्द तुम्हें समेटती हो, उस पवित्र नाम का प्रार्थना में उच्चारण करें। ओ आइए इसे फिर से गाएं, यीशु के नाम को अपने साथ लें, हर एक फंदे से एक ढाल की नाई, जब परीक्षाएं इर्द गिर्द तुम्हारे बढ़ती हैं, उस पवित्र नाम का प्रार्थना में उच्चारण करें। आइए अब अपने सिर को झुकाएं। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओह कितना प्यारा, धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम कितना प्यारा। धरती की आशा और स्वर्ग का आनंद।